ओम शांति, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जीवन का आधार गीता के सार की अमृत वाणी की श्रृंखला का तीसरा और आखिरी दिन ब्रह्मा कुमारीज की ओर से आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम का आरंभ परमात्मा की स्मृति से करेंगे। तीन दिन के अंदर हम सबको पता चल गया है और सवेरे वालों ने तो सीख भी लिया है कि कैसे परमात्मा को याद किया जाता है। तो दो मिनट साइलेंस में प्रभु स्मृति से कार्यक्रम का आरंभ करेंगे।
श्रेष्ठ बनेंगे कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
का हमारा टॉपिक है कर्म योग, कर्म की श्रेष्ठता और सफलता का आधार। हम सुनेंगे हमारी आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी से आपके लिए कुछ चंद शब्द जो सबकी भावना के शब्द है, आपके हृदय के शब्द है, वही मैं दोहराऊंगी। आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है, जब भी आप आते हो मंच पर, तालियों से महफिल सजती है, तो हमारी आदरणीय उषा बहन।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का सार, जीवन का आधार। कल हम सभी ने स्वधर्म का परिचय पाया और आत्मा की वास्तविकता, उसके विषय में देखा कि परमात्मा अर्जुन को किस तरह बड़े सरल शब्द में आत्मा का ज्ञान देते हैं, और वो आत्मा का ज्ञान देते हुए उसके मन के अज्ञान को दूर करते हैं, आत्मा की वास्तविकता का परिचय कराते हैं कि आत्मा अपने स्वधर्म में जब स्थित है तब सुख का अनुभव करता है, और पर धर्म दुख का कारण है। पर धर्म का मतलब है कि आत्मा का स्वधर्म शांति है तो पर धर्म क्रोध है। क्रोध के वश होते हैं तो दुख मिलता है। आत्मा का स्वधर्म ज्ञान है, पर धर्म अहंकार है, अज्ञान है। तो जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश आत्मा होती है वही दुख का कारण है, और स्वधर्म में जब स्थित है तो सुख का आधार है, और जब स्वधर्म में स्थित होकर के व्यक्ति कर्म करता है तो कल हमने जो बातें देखी कर्म योग किसको कहा, गीता में कितना सुंदर तरीके से भगवान ने बताया कि स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म यही कर्म यथार्थ रूप में कर्म योग है, और इस कर्म के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। मनुष्य को बांधने वाले उसके अशुद्ध कर्म है। जब पर धर्म के वश होकर कर्म करता है वही उसको बंधन में बांधता है, और स्वधर्म के आधार पर कर्म करता वो उसको बंधन मुक्त कर देता है। फिर कहा इसमें बीज का नाश नहीं है और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं है उसे नष्ट करने का, इतना पावरफुल ये कर्म है स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म। तीसरा कहा इस कर्म से संपादित धर्म यानी जो पुण्य अर्जित करते हैं ये पुण्य व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति है जो उसको जन्म मृत्यु के महान भय से भी उद्धार करने वाला है, लेकिन इसमें सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर कर्म करने की आवश्यकता है। संशय नहीं आना चाहिए कि पता नहीं मैंने शांति से प्रेम से कोई कर्म किया लोग क्या सोचेंगे, इसलिए इस डर से कई बार लोग अच्छा कर्म नहीं करना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों की छोड़ो, भगवान क्या कहता है उसकी सुनो ना। प्राप्ति किसमें है, भगवान की बातों में प्राप्ति है या लोगों का सोच सोच करके आप जीवन जी रहे हैं। लोगों को तो फुर्सत भी नहीं है वो आपके बारे में सोचे या खुद के बारे में सोचे। आज की दुनिया में मनुष्य इतना उलझा हुआ है उसके पास कहां फुर्सत है किसी के बारे में सोचने की, और अगर वो अपना छोड़ करके दूसरों का सोचता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे जो अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देवे और दूसरे के कर्मों पर ध्यान दे रहा है, उसको समझदार कहेंगे बेसमझ कहेंगे क्या कहेंगे। इसलिए उनकी चिंता नहीं करो। आप भगवान ने क्या कहा उसको समझते हुए निश्चयात्मक बुद्धि होकर कर्म करो। उसके बाद भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है आगे कर्म योग के लिए कि कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल में नहीं। गीता का यह सबसे पॉपुलर श्लोक है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, सबसे पॉपुलर श्लोक। हर कोई जानता है इस श्लोक के विषय में कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, लेकिन आज की दुनिया में तो पहले फल की चिंता होती है। एक बच्चे को भी आप कहो ये काम करो तो सबसे पहला सवाल होगा क्या मिलेगा, अगर मैं ये करूं तो क्या देंगे आप मुझे, पहले फल की चिंता करता है। और गीता में भगवान कहते हैं फल की चिंता मत कर। क्यों क्यों ना करें, फल की चिंता क्यों ना करें? क्योंकि फल कर्म की परछाई है, उस परछाई से उसको अलग नहीं कर सकते। जिस तरह एक व्यक्ति को अगर कहा जाए कि अपनी परछाई पकड़ के लाओ, सारा दिन चलता रहेगा, परछाई को पकड़ सकेगा नहीं, लेकिन इतना करे घूम जाए, सूर्य के तरफ मुख करे और चलना आरंभ करे तो परछाई कहां जाएगी, पीछे पीछे आएगी। हमें भी इतना ही करना है, अपना मुख ईश्वर की ओर करते हुए जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते चलना है। और जब जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते चलते हैं तो फल रूपी परछाई कहां जाने वाली है, तो पीछे पीछे आएगी, है कि नहीं? वो परछाई कभी कर्म से अलग नहीं हो सकती है। आज नहीं तो कल फल अवश्य मिलना ही है, कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन फल तो मिलेगा। कई लोग क्या सोचते हैं, इधर पाप करो इधर दान कर दो बैलेंस हो गया। ऐसे बैलेंस नहीं होता है। आज मैं आपसे 500 रुपया लूं और फिर मैं वो 500 रुपया किसी को दान कर दूं, और फिर एक दिन आपने कहा भाई मेरा 500 रुपया लाओ तो सही, वापस तो करो, और आप कहें मैंने दान कर दिया ना, अब तुम निश्चिंत हो जा, वो क्या कहेगा? अरे दान करना होगा तो मैं करूंगा ना, तुमने जो दान किया तुम्हें जो करना है कर, मेरा तो 500 रुपया ला। कहेंगे कि नहीं, या छोड़ देंगे, चलो उसने दान ही किया है ना, छोड़ देंगे। ठीक इसी तरह जो पाप कर्म किया उसका भी फल तो मिलेगा ही, और जो पुण्य करते हैं उसका भी फल मिलेगा, लेकिन ये बैलेंस नहीं होता है कि इधर पाप करो इधर पुण्य कर दो तो वो पाप कर्म से छूट जाएंगे, उसके फल से छूट जाएंगे। ये गलती नहीं करना, ये गैर समझदारी नहीं अपनाना। जो कर्म करता है, इसलिए कर्म सिद्धांत ये है, लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। इसीलिए जो पाप किया उसका भी फल मिलेगा, जो पुण्य कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा। ये नहीं कि पाप करने का फल पुण्य कर दिया इसलिए बैलेंस हो गया, भगवान के पास ये हिसाब किताब नहीं है। जो करेगा सो पाएगा, ये स्वाभाविक है, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए फल को कभी भी उस कर्म से अलग नहीं कर सकते हैं। इट इज इनसेपरेबल, यही भगवान कहना चाहता है। एक बार की बात याद आती है कि एक सेठ जी थे, सेठ जी के तीन बेटे थे। दो बेटों की शादी हो गई थी, तीसरे बेटे की शादी होने वाली थी। अब हुआ ऐसा कि जैसे ही तीसरे बेटे की शादी हुई, घर में बहू आई, तो पहली दो बहू ने, बड़ी बहुओं ने तीसरी बहू को ससुर जी का नियम बता दिया कि भाई हमारे ससुर जी का नियम है दान नहीं करना। अब वो छोटी बहू को बड़ा आश्चर्य लगा, ये कैसा नियम, क्योंकि उसके पिता ने तो सिखाया था बेटा दान करना। अब उसको यहां पहले दिन ही बता दिया गया दान नहीं करना। ठीक है भाई, अभी ससुराल में जो नियम है वो तो पालन करना ही पड़ेगा। कुछ समय बीता, 8-10 महीने बीते, एक भिखारी आया, गेट से आवाज लगाया उसने, तीन जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। छोटी बहू ऊपर कपड़े सुखा रही थी गैलरी में, उसने सुना तो उसने वहां से उसको जवाब दिया, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। वो भिखारी चला गया। नीचे ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे, उसने ये बात सुनी, बासी खाना खा रहे और कल उपवास करेंगे, ये बहू क्या कह रही है, कौन से दिन उसको बासी खाना खिलाया, कौन से दिन उपवास कराया, ये तो हमें बदनाम कर रही है। आज एक भिखारी को कहा, कल समाज वालों को कहेगी, ऐसी बहू नहीं चाहिए हमको जो हमें ही बदनाम करे। ससुर जी ने तुरंत उसके पिता को फोन किया कि भाई आपकी बेटी आप ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। आज की दुनिया में अगर ऐसा होता तो बाप जाकर लेके भी आ जाए, लेकिन वो जमाना था जब बेटियों को कहा जाता था कि अब तेरी डोली गई है, अर्थी निकलेगी वहां से। अब जब समधी जी ने ये फोन कर दिया, कैसे बेटी को लेके आए, पिता बड़ा परेशान कि मेरी लड़की इतनी समझदार है, वो ऐसा वैसा तो कुछ बोलेगी नहीं, ऐसा क्या हो गया जो समधी जी ने कहा कि ले जाओ अपनी लड़की को। बड़ा परेशान, गांव में पंच होते थे उस समय में, तो पंचों के पास गया कि भाई आप तो मेरी लड़की को जानते हो, इतनी समझदार है वो, आज समधी जी का फोन आया कि उसको ले जाओ। अब क्या हुआ समझ में ही नहीं आ रहा। तो पंचों ने कहा, ये तो बात सही है कि आपकी बेटी बड़ी समझदार है, बड़ी सयानी है, वो ऐसा वैसा तो कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन एक काम करते हैं, हम सेठ जी को ही बुलाते हैं, पूछ लेते भाई क्या हुआ। सेठ जी को बुलाया गया, भाई ऐसा क्या हुआ जो आपने ये बात कह दी। तो सेठ जी ने कहा, रहे भिखारी आया, भिखारी को कहती है बासी खाना खा रहे, कल उपवास करने वाले, किस दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया, किस दिन उपवास करने लिए कहा, ये तो हमें बदनाम कर रही है, ऐसी बहू नहीं चाहिए। आज भिखारी को बोला, भिखारी को मुंह लगने की क्या जरूरत थी उसको, कल समाज वालों को बोलेगी। सभी ने कहा, ये बात तो गलत है, ऐसा करते हैं हम, लड़की को ही बुलाते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, लड़की को बुलाया भाई तुमने ऐसा क्यों कहा। लड़के ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा, अगर मेरे मुख से कुछ उलट पुलट निकल गया हो क्षमा चाहती हूं। लेकिन वो भिखारी ने कहा, तीन जन्म का भूखा हूं। उसके उत्तर में मैंने ये बात कही कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। कहा उसका भाव क्या था? तो कहा उसका भाव यह था कि पहले जन्म में उसके पास होगा लेकिन दान ही नहीं किया। जब दान ही नहीं किया तो फल क्या मिलेगा? तो भिखारी बनना पड़ा। अब भिखारी बनेगा तो क्या दान करेगा? तो तीसरा जन्म भी ऐसा ही होगा। इसलिए वो कहना चाहता था कि कुछ ऐसा दे दो ताकि मैं भी दान करूं, तो कम से कम कुछ तो सिलसिला चालू हो मेरे जीवन परिवर्तन का। लेकिन हमारे घर में ससुर जी का नियम है दान नहीं करना। इसीलिए मैंने उसको कहा, ये जो तुम बंगला देख रहे हो, गाड़ी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, ये पिछले जन्म के अच्छे कर्म का फल है। तो बासी खाना खा रहे हैं लेकिन हम भी इस जन्म में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगला जन्म हमारा भी उपवास ही करना है। बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। आप सभी क्या कर रहे हैं? उपवास तो नहीं करेंगे ना अगले जन्म में। इसलिए कहा कर्म करने पर तेरा अधिकार है, जैसा कर्म करना चाहेगा तेरा अधिकार है, फल पर नहीं है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल तो मिलना ही है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। उसके बाद भगवान कहते हैं लेकिन सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है कर्म करते समय। कौन सी दो बातों का ध्यान रखना है? तो कहा एक तो आसक्ति, दूसरा संग दोष। ये दोनों को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान भाव रख, योग में स्थित होकर निष्काम कर्म कर। ये समत्व भाव ही योग कहलाता है। व्हाट इज योगा? आज दुनिया के अंदर योग योगा हो गया। योगा माना खाली एक्सरसाइज करना, आसन लगाना। लेकिन गीता के अंदर हर अध्याय योग है। लेकिन भगवान ने अर्जुन को कहीं पर भी एक्सरसाइज नहीं सिखाई, आसन नहीं लगवाए, फिर भी हर चैप्टर योग है। तो योग माना क्या, उसको भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि योग माना समत्व भाव, बैलेंस, जीवन के अंदर संतुलन, बैलेंस बहुत जरूरी है। किस में बैलेंस रखना है? व्यवहार और परमार्थ दोनों का बैलेंस चाहिए, भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का बैलेंस चाहिए। भगवान हमें यह नहीं कहता है कि यह आध्यात्मिकता करने के लिए तुम भौतिकता को छोड़ दो, नहीं। आज अगर मैं यहां से सारी कुर्सियां हटवा दूं और सबको कहूं नीचे बैठ जाओ, त्याग करो, कुर्सी का त्याग करो, नीचे बैठो, अब आज की दुनिया में हर एक को घुटना का प्रॉब्लम है, बैठ सकेंगे दो घंटा? योग किससे होगा? जो बातें मैं सुना रही हूं वो अच्छी तरह से ग्रहण होंगी, सुनेंगे, या घुटनों से योग होगा? ये कब खत्म हो, ये कब खत्म हो, ये कब खत्म हो, इतना दर्द कर रहा है। अरे साधन बुरे नहीं है, साधन बुरे नहीं है, साधन है, यूज करो। लेकिन उसमें जो आसक्ति है, मेरा है, कोई दूसरा यूज ना करे, ये मेरा भाव जो है उसके अंदर, ये आसक्ति, ये बुरी है। तो भगवान ने कहा भौतिकता और आध्यात्मिकता का बैलेंस करो, भौतिकता को भी यूज करो और यूज करते हुए आध्यात्मिकता को प्रैक्टिस करो। गलत है क्या? आज कुर्सी है, बैठे हैं आराम से, आप सुन रहे हैं, बातें ग्रहण तो हो रही, तो साधन बुरे नहीं है। ये भगवान ने कहीं अर्जुन को नहीं सिखाया तू साधनों का त्याग कर दे, सन्यासी बन जा, गृहस्थ को छोड़ दे, ये नहीं कहा। तो योग माना क्या? जीवन के अंदर बैलेंस, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस। जहां बैलेंस है वहां जीवन बहुत सुंदर लगेगा। अति में कोई भी चीज, अति में जब जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्सट्रीम में अगर चले गए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन भगवान कहते समतुलन, जो समतुलन रखते हुए चलता है, बैलेंस रख करके जीवन में चलता है, वो बहुत अच्छी अनुभूति करता है। कितना सुंदर योग का मतलब भगवान समझाते हैं। और बैलेंस के साथ हम चल रहे हैं उसका प्रमाण कैसे पता चले कि हां हम समतुलन को लेकर चल रहे हैं? व्हाट इज द प्रूफ कि जीवन बैलेंस्ड है? तो भगवान आगे कहते हैं, समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। भावार्थ कि जब व्यक्ति बैलेंस के साथ चलता है तो उसका हर कर्म कौशल बन जाता है, जिसमें से लोग इंस्पिरेशन प्राप्त करते हैं। उसका हर व्यवहार कुशलता वाला होता है, दूसरों को सुख देने वाला होता है। तो व्यवहारिक कुशलता, कर्म कुशलता, बैलेंस से चलने वाले के जीवन के अंदर कुशलता है। जो बैलेंस से नहीं चलता है वो खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है, कुशलता नहीं उसके अंदर। मुझे याद आता है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो फाउंडर थे ब्रह्मा बाबा, तो एक बार ब्रह्मा बाबा दिल्ली गए थे, तो दिल्ली गए थे तो वहां प्रवचन था बाबा का। तो दो माताएं बहुत दूर से आती थी, बस चेंज कर बस में आती थी, लेकिन फिर भी बस में टाइम पर पहुंच जाती थी बाबा का जब क्लास शुरू होने वाला होता था तब। तो एक दिन आकर पहला नंबर बैठ जाती थी, तो एक दिन दोनों बहनें आई नहीं, दोनों माताएं आई नहीं। बाबा का ध्यान तो गया कि आखिर भी ये दोनों बहनें कहां रह गई, आज क्यों नहीं आए। खैर बाबा ने तो अपना प्रवचन शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ सब जाने लगे तब दोनों माताएं दौड़ दौड़ के आ रही हैं। बाबा बाहर ही खड़े थे तो बाबा ने पूछा, बच्ची आज इतना लेट कैसे हो गया? तो दोनों माताओं ने कहा कि बाबा हम योग में बैठे थे और कब स्टेशन चला गया ना, बस स्टॉप चला गया, पता ही नहीं चला, तो एकदम लास्ट में पहुंच गए, वहां से दूसरी बस पकड़ करके अभी आ रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा पता है? अगर तुम योग में होती थी ना तो बस स्टॉप जाता ही नहीं था, बस स्टॉप चला गया क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा, तभी बस स्टॉप चला गया। अगर तुम परमात्मा की स्मृति में होती थी तो बस स्टॉप जाता ही नहीं था, क्योंकि वो टचिंग करता था, बस स्टॉप आ गए उतर जाओ। बड़ी सुंदर बात कही, कर्म कुशलता। कर्म में अगर त्रुटि आई, गलती हुई, नुकसान हुआ, माना यू आर नॉट इन अ बैलेंस स्टेट, आप बैलेंस में नहीं थे, आपके मन के अंदर कोई नकारात्मक विचार होगा, चिंता होगी, कोई बात होगी जो परेशान कर रहे, तभी नुकसान हुआ। इसलिए व्यक्ति से जब कोई चीज टूटती है फूटती है तो क्या कहते हैं, पता नहीं ध्यान कहां था, इसका ध्यान ही नहीं होता है। कहते हैं ना, अगर मान लो कि परिवार में आपकी बेटी से कुछ टूट गया तो बड़े क्या कहते हैं, ध्यान कहां है तेरा, ध्यान कहां है? तो ध्यान अगर है, कर्म में फोकस्ड है, तो कभी भी आपका कर्म गलत हो ही नहीं सकता है, वहां गलती हो ही नहीं सकती है, कभी भी आपके कर्म में कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती है, कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। योग इसी का नाम है, योग जब है जीवन के अंदर तो जीवन इतना सुंदर, कर्म कुशलता, व्यवहार कुशलता, ये स्वाभाविक, ये पहचान है उसकी। ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर ब्रह्मा बाबा हमेशा बच्चों को सिखाते थे कि तुम्हारा ध्यान अगर इधर उधर भटक गया तो तुम्हारे कर्म में नुकसान होगा, त्रुटि होगी, गलती होगी, फिर परेशान होते, और भी परेशान होते रहेंगे। इसलिए जो कर्म करो ईश्वर की याद में करो तो कोई त्रुटि नहीं होगी। इतनी सुंदर बात गीता में भगवान हमें सिखाता है, कुशलता, कौशल, हर कर्म सिग्निफिकेंट होगा, इतना सुंदर होगा जो कोई भी देखेगा कहेगा ये किसने किया है, किसने किया है इतना अच्छा कर्म। ये है योग कि जब व्यक्ति एकाग्रता के साथ जब कोई भी कर्म का आचरण करता है तो उस कर्म के अंदर कौशल समा जाता है। फिर आगे भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग की पराकाष्ठा का फल अमृत पद को प्राप्त करेगा, अमृत पद मिलेगा, यानी अमर हो जाएगा। आज स्वामी विवेकानंद, हर कोई बच्चा बच्चा आज भी इतने सालों के बाद भी जानता है, क्यों जानता है, अमृत पद को पाया। ऐसे ही जो महान ऐसी आत्माएं हो गई जिन्होंने अपने आप को इस संसार के अंदर अमर कर दिया, कब किया, जब ये विचलित बुद्धि को समाधि में स्थिर किया और योग की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। जब ऐसी योग की पराकाष्ठा जीवन के अंदर आती है तब परिपक्वता, मैच्योरिटी, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, बहुत जरूरी है। मैच्योरिटी खाली नहीं चाहिए लेकिन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जिसके अंदर है वो जीवन के अंदर परिपक्वता, हर कार्य करेगा तो जैसे दूसरों के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। लेकिन कई बार कई लोग क्या कहते हैं, बहन जी हम लोग तो अच्छा कर्म करना चाहते हैं लेकिन इस दुनिया में जो अच्छा कर्म करते हैं ना वही मार खाता है और जो बुरा कर्म करने वाला है ना वो तो मौज कर रहा है। तो भगवान के घर में भी कहा तो ये जाता देर है अंधेर नहीं है, लेकिन यहां तो जितना व्यक्ति अच्छा कर्म करता जाए वही भोगना भोगता है और जो बुरा कर्म करता है वो तो मौज कर रहा है। तो उनका हिसाब कब होगा, सवाल आता है मन के अंदर, ये सवाल आता है, आता है। बहुत सुंदर एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार दो व्यक्ति रास्ते से गुजर रहे थे। एक व्यक्ति बड़ा ईमानदार था, दूसरा व्यक्ति बड़ा बेईमान था। दोनों के आपस में कोई पहचान नहीं थी, दोनों अपनी अपनी रीति से जा रहे थे रास्ते पर चलते हुए। अचानक क्या देखा कि रास्ते में किसी का बटुआ पड़ा था, तो जो बेईमान था ना उसने फटाक देके बटुआ उठा लिया, देखा उसमें 1000 रुपया पड़ा है, बड़ा खुश हो गया, तो बिना मेहनत के ही 1000 रुपया मिल गया। फिर उसके मन में आया मैंने जैसे देखा इसने भी देखा, तो उसको कहते देख ये बटवा जो है ना उसके अंदर 1000 रुपया है, अगर तुम चाहो तो हम आधा आधा कर लेते हैं, तुमने भी देखा मैंने भी देखा आधा आधा कर लेते हैं। तो जो ईमानदार था उसने कहा कि भाई जिसका ये बटवा गिरा होगा वो व्यक्ति बड़ा परेशान होता होगा, हो सकता है उसका पगार हो इतना ही रुपया है, लेकर जा रहा था, गिर गया, उसमें एड्रेस तो होगा, अगर उसको दे देंगे मिल जाएगा, दुआएं देगा, हम क्यों लेवे उसका। तो बेईमान ने कहा, देखो पहली बात इसमें एड्रेस कार्ड है ही नहीं, अगर होता था ना तो भी मैं देने वाला नहीं था, क्यों, कौन उसको ढूंढता फिरेगा। अच्छा तुम नहीं ढूंढ सकता है, पुलिस वालों को दे देते। तो बेईमान ने कहा कि देख भाई, अगर उसके नसीब में होता था ना तो गिरता ही नहीं था, अब नसीब में है ही नहीं, हम पुलिस वालों को देंगे, वो आपस में बांट लेंगे, उसके नसीब में तो है ही नहीं ना, तो मैं ऐसी मूर्खता क्यों करें, तेरे को नहीं चाहिए तो मना कर दे, मैं पूरा रखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इसके गिरने के बाद यहां से कोई गया नहीं है, और इसीलिए हमारे हाथ ही लगा है, इसका मतलब ये हमारे नसीब का है, उसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। आज की दुनिया यही है, ईमानदार ने कहा मुझे तो नहीं चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं पूरा रखने के लिए तैयार। जैसे ही दोनों आगे चलने लगे, जो ईमानदार था ना उसको इतना जोर से कांटा लगा, खून निकलने लगा, तो बेईमान उसको कहता है बड़ी ईमानदारी की बातें कर रहा था ना इसलिए कांटे लगते हैं, बेईमानी से जीवन जियो पर्स मिलेगा। आज की दुनिया, अब उसी समय शाम का समय था तो कुछ देवताएं वहां से गुजर रहे थे, देवताओं ने ये दृश्य देखा तो सारे देवताएं मिलकर भगवान के पास गए कि त्राहिमाम भगवान, त्राहिमाम भगवान ने कहा क्या हुआ, तो कहा अरे ये दोनों जा रहे हैं, एक बड़ा बेईमान है एक बड़ा ईमानदार है, बेईमान को पर्स मिलता है, ईमानदार को कांटे लगते हैं, लगता है कि जो आपका गुप्त क्या कहते हैं गुप्त गुप्त चित्रगुप्त जो है वो गड़बड़ कर रहा है, ईमानदार को पर्स मिलना चाहिए बेईमान को कांटा लगना चाहिए, उल्टा कैसे हो गया, इसका मतलब चित्रगुप्त जो है ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। भगवान ने कहा चित्रगुप्त कभी गड़बड़ नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं बुलाता हूं उसको। चित्रगुप्त को बुलाया कि भाई दोनों का अकाउंट लेके आओ, दोनों का अकाउंट लेके आए तो देखा कि जो ईमानदार था वो पहले बड़ा बेईमान था, और उसने बेईमानी में इतने बुरे कर्म किए थे कि उसकी सजा उसको बहुत कड़ी मिलने वाली थी, माना जिसको कहे कि ऐसा दुख की प्राप्ति होने वाली थी जो बड़े दर्द के साथ उसको जीवन जीना था, लेकिन वो सजा देने से पहले जो कहा ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो भगवान ने उसको अंतिम चांस दिया सुधरने का सजा देने से पहले कि भाई अभी भी सुधर जा, और लास्ट चांस जो मिला और सचमुच उसने वो चांस पकड़ लिया और सुधर गया, वहां से उसने रास्ता अपना बदली कर दिया, ईमानदार बन गया, इतना अच्छा कर्म करने लगा, वो सजा धीरे 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 भोग लिया उसने, किसी भी तरह से क्षीण होती गई होती गई होती गई, और अब जो कांटा चुभाना इतना ही रह गया था, बेईमानी का फल इतना ही रहा था कांटा चुभने जितना, वो चुभ दिया उसको, और जो बेईमान था उसका रिकॉर्ड निकाला तो पहले बड़ा ईमानदार था, और उसकी ईमानदारी के फल स्वरूप उसको इतनी बड़ी प्राप्ति होने वाली थी, इतनी बड़ी लॉटरी लगने वाली थी करोड़ों रुपया की, बड़ा सुंदर जीवन उसका होना था, लेकिन भगवान ने सोचा अंतिम परीक्षा लेकर के देखे इसकी ईमानदारी रखता है या छोड़ देता है। और वो अंतिम परीक्षा में उसकी धैर्यता खत्म हो गई और वहां से उसने अपना रास्ता बदल लिया, बेईमानी का जीवन जीने लगा, ईमानदारी का फल भोगता रहा। और ये हजार रुपया बचा था, अंतिम हजार रुपया बचा था, अभी बेईमानी का फल तो बाकी है। जब भगवान ने ये बातें सारी अकाउंट खोल करके बताई दोनों की, तब देवताओं को भी समझ में आया। तो देवताओं ने भगवान से पूछा, इतने करोड़ों मनुष्य है, ये चित्रगुप्त सबका हिसाब किताब कैसे रखता है? तो भगवान ने कहा, वो चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त यानी वो हर मनुष्य के अंदर गुप्त रीति से चित्र खींचने वाला कैमरा लगा देता है। गुप्त रीति से चित्र खींचने वाला, जिसको कहे ना स्टिंग ऑपरेशन करने वाला कैमरा लगा देता है, जो हर कर्म को नोट होता जाता है, पता चित्र खींचते जाता है। हमें पता नहीं है अंत में वो सारा चौपड़ा के रूप में बाहर आता है, ये कर्म तुमने किया। नहीं तो आज का मनुष्य ऐसा है, कर्म करने के बाद भूल जाता, जब ऊपर भगवान कहते तुमने ये कर्म किया है, इसकी सजा भोगनी पड़ेगी, तो मनुष्य क्या कहेगा, अरे ये कर्म मैंने किया ही नहीं, घूम जाएगा बहुत जल्दी। इसीलिए चित्रगुप्त में कोई भी इंसान घूमे नहीं, वो सारे चित्र फोटोग्राफ्स रख देता है, देख ले कौन कर्म कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है, चित्रगुप्त। तो देवताओं ने पूछा, भगवान ये चित्रगुप्त ने कैमरा कहां लगाया हुआ है? कहिए तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मनुष्य सबसे पहला काम जन्मते क्या करेगा, वो ऑपरेशन करवा के कैमरा ही निकाल देगा। इसीलिए ये चित्रगुप्त ने इतना गुप्त रीति से वो कैमरा रखा है कि सारा दिमाग खोल देना तो भी उसको कैमरा मिलने वाला नहीं है। ऐसा गुप्त रीति जगह पर उसने रखा हुआ है और गुप्त रीति से चित्र खींचता जाता। इसलिए याद रखना, हर कर्म करते समय फोटोग्राफ खींच रहा है हर कर्म का, और अंतिम समय वो सारे सामने आएंगे उसी के आधार पर। फिर ताकि उस समय आप ये भी नहीं कह सकते, ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं, कब किया मैंने, फोटोग्राफ है आपका करते हुए, फोटोग्राफ है। इसीलिए ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं कि भाई हमें तो समाज में रहना है, बाल बच्चों को पालना है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है। अरे भाई, जिसके लिए कर रहे हैं उसको जरा पूछो तो सही कि आपके बुरे कर्म में वो भागीदार है, हैं? फिर करो। अच्छा, ये तो आप सभी मानते हैं कि यहां जो लिखा है उतना ही मिलना है, ये मानते हैं ना, नसीब में जितना होगा उतना ही मिलेगा। अब नसीब में जितना है उतना ही मिलना है, चाहे नैतिकता से या अनैतिकता से, मिलना तो उतना ही है ना, जितना नसीब में है। तो नैतिकता से भी इतना ही मिलना हो, अनैतिकता से कमाया हुआ भी उतना ही मिलना हो जितना यहां है, तो अनैतिकता से क्यों कमाए जब उतना ही मिलना है? अच्छा, अनैतिकता से कई लोग सोचते हैं हमें भाई बड़ा ज्यादा मिल गया, जो ज्यादा मिला ना, जब यहां नहीं है भोगने का तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते जाना है, उसका सुख आप कभी नहीं भोग सकेंगे। जितना नसीब में है उतना ही भोगना है, चाहे नैतिकता से कमाओ अनैतिकता से कमाओ। तो क्या करना चाहिए, समझदारी किसमें है? समझदारी किसमें है? क्या कहेंगे? नैतिकता से चलो ना। जब जितना यहां लिखा है उतना ही मिलना है, अनैतिकता से कमाया हुआ भी इतना ही मिलना है, तो क्यों अनैतिकता को अपनाते हैं? इसलिए गीता कहती है ये विचलित बुद्धि किसमें विचलित होती है? लोभ में। ये विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी और तू योग की पराकाष्ठा को, परिपक्वता को प्राप्त कर लेगा, तो अमृत पद को प्राप्त करेगा, जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। इसीलिए समझदारी से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो कहा, वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी अपनाए कि नसीब में जितना लिखा है, चाहे नैतिकता चाहे अनैतिकता, उतना ही मिलना है, उससे ज्यादा एक पैसा भी मिलने वाला नहीं है। तो क्यों हम अनैतिकता से अपने कर्मों का खाता खराब लिखे? क्योंकि बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए करके आपने कमाया तो सही, लेकिन उसको पूछ लो, मेरे पाप कर्म में आप भागीदारी बनेंगे? वाल्मीकि जी से पूछा कि पूछ के आओ अपने परिवार को, तेरे पाप में वो भागीदार है? तो क्या कहा परिवार वालों ने? अरे तेरा कर्म तू जाने, हम क्यों भागीदारी बनेंगे? ऐसे परिवार वालों से पूछ लो कि भाई हम तुम्हारे कारण पाप कर रहे हैं, तू भागीदार बनेगा? बनेगा? कोई बच्चा बनेगा आपके पाप कर्मों में भागीदार? कोई बनने वाला नहीं है। आपका कर्म आपको ही भोगना है। अपने जीवन के आगे जो कहा, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास न करना पड़े और ये बदतर जीवन न जीना पड़े, ये सोच लेना कर्म करते समय। ये कर्म की गुह्य गति बहुत गुह्य है, बहुत गुह्य है। फिर आगे भगवान कहते हैं स्थिर बुद्धि के पुरुष के लक्षण, स्थित प्रज्ञता किसको कहा जाता है? तो कहा जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों को त्याग देता है, तब वो आत्म से ही आत्म में संतुष्ट हुआ, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसा आत्म तृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। आत्म संतुष्टि, स्थित प्रज्ञता का पहला लक्षण क्या है? आत्म संतुष्टि का अनुभव करेगा कि जहां आसक्तियां ही त्याग दिया तो कर्म कर रहा है, लेकिन स्थित प्रज्ञता, आत्मसंतुष्टि का अनुभव जीवन के अंदर करता है। दूसरा लक्षण बताया, जो व्यक्ति कछुए की तरह अपनी कर्मेंद्रिय को समेटकर उन्हें इंद्रिय विषयक रसनाओं से हटाना जानता है, वही स्थित प्रज्ञ है। प्रज्ञ माना बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इंद्रियों को रसना बहुत है, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, चारों तरफ घूमती रहती है ये इंद्रियां अपनी रसनाओं को पूरी करने के लिए। तो जब उससे हटा देते कछुए की तरह, जब कर्म करना है तो इंद्रियों को विस्तार में लाओ, जब कर्म पूरा हुआ तो संकीर्ण लो, है ना? वो इंद्रियों के पीछे उसको भटकाओ नहीं। फिर कहा समेटने की शक्ति और अंतर्मुक्ता की धारणा आत्म अनुभूति से होती है। समेट लेता है व्यक्ति, अंतर्मुखी हो जाता है, भीतर चला जाता है और भीतर जाकर के आत्म अनुभूति करता है। आप सभी ने ये देखा होगा कि जब आप शिव के मंदिर में जाते हैं तो बाहर तो नंदी होता है, लेकिन द्वार पर कछुआ होता है। नंदी को भी प्रणाम करते हैं और कछुए को भी क्या करते हैं? अंदर जाने से पहले कछुए को भी प्रणाम करते हुए जाते हैं। अब कछुआ वहां क्यों रखा? ये भी हमें शिक्षा देता है कि किस तरह अपने जीवन के अंदर इंद्रियों को समेटना भी आना चाहिए। जब विस्तार करना है तो विस्तार में आओ, जब समेटना है तो समेट लो, ये सिखाता है। लेकिन आज की दुनिया में फेंगशुई में लोग एक दूसरे को कछुआ भेंट करते हैं, क्यों? कहते गुड लक। फेंगशुई में टॉर्टोइस वेद करते हैं ना, पूछो क्यों, तो कहते गुड लक आता है, इसलिए किसी को देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए, दो तो गुड लक आपके जीवन में गुड लक आएगा। अब कछुआ भेंट करने से गुड लक नहीं आता है, कछुआ जैसा जीवन अगर बना दिया ना तब गुड लक आता है। बाकी भेंट करते जाओ और गुड लक आता जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कितनी बड़ी गलतफहमी में मनुष्य जीता है। फेंगशुई वालों ने कह दिया कि हाँ भाई कछुआ भेंट करो गुड लक आएगा, ऐसे कोई गुड लक नहीं आता है, कछुआ जैसा जीवन बनाओ। हमारे भारतीय संस्कृति में शिव के मंदिर में जो कछुआ रखा है वो तो हम लोगों को यही प्रेरणा देता है। बाकी विदेश वाले समझते हैं भाई कछुआ भेंट करो गुड लक आ जाएगा, ऐसे कोई गुड लक थोड़ी आ जाता है ना। फिर आगे अर्जुन का एक सवाल है कि मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो जाती है, योग परायण बुद्धि नष्ट कैसे हो जाती? तो भगवान उसका मार्ग बताते हैं और कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है। कल ही बताया विषय माना विकार, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। जिन विषयों से जिन विकारों से मनुष्य पाप का आचरण करता है उसको कहा विषय। तो कहा विषयों का चिंतन करने वाला, माना विकृत चिंतन जब हमारा होता है तो विकृत चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है, विकारों के वश हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। कामना उत्पन्न हुई, कामना पूरी नहीं हुई, आज एक बच्चे ने भी जो कोई कुछ चाहा अपने माँ बाप से नहीं लाके दिया तो क्या होता है, कितना क्रोध, क्या तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, घर में नाक में दम ला देता है। तो कामना पूर्ति में व्यवधान आया तो क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से अविवेक जागृत होता है। उस समय क्रोध में आकर मनुष्य क्या बोलता है वो भी पता नहीं चलता है, इतना अविवेकी हो जाए। बाद में जब उसका दिमाग शांत हो और आप बताओ ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए, क्या शब्द तुम्हारे मुख से, क्या कहेगा, मैंने कब बोला ऐसा, स्मृति शक्ति भ्रमित हो जाती है, उसको ये भी याद नहीं रहता है कि मैंने क्या बोला। तो क्रोध से अविवेक जागृत होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो बैलेंस खत्म हो जाता है बुद्धि का। अतः निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा गया है। इसलिए ऐसा बुद्धि योग जब होगा तब ईश्वर में लगता है, नहीं तो बुद्धि योग भटकता रहता है, क्योंकि योग परायण बुद्धि नष्ट हो गई। कितना सुंदर डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल बात भगवान बताता है कि आज मनुष्य की बुद्धि काम क्यों नहीं करती है। कई लोग रियलाइज भी करते क्या करे, उस वक्त बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी, है ना, कोई गलत फैसला ले लेता है और गलत फैसला लेने के बाद जब नुकसान भर भोगना पड़ता है और कोई उसको पूछता है भाई तुम्हारी बुद्धि तो इतनी अच्छी फिर तुमने ये गलत फैसला क्यों लिया, तो क्या कहते, उस वक्त मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी इसलिए मैंने इसकी बुद्धि का सहारा लिया और इसकी बुद्धि का नतीजा देखो क्या हुआ। खुद की बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही थी, टेंशन में था, टेंशन में था इसलिए काम नहीं कर रही थी। तो योग परायण बुद्धि नष्ट क्यों हुई, कहीं ना कहीं कोई कामना है, आसक्ति है, विषयों का चिंतन कर रहा है, विकृत चिंतन में बिजी है, उससे आसक्ति कामना उत्पन्न हुई और कामना पूरी नहीं क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी समय फैसला लेने के लिए कहा, तो सही फैसला ले सकता है? कभी नहीं ले सकता है, गलत फैसला। इस अध्याय के अंत में फिर भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जिस तरह तेज हवा पानी पर तैर रही किश्ती को बहा कर ले जाती है, उसी तरह ये विकृत विषय के चिंतन में जब कर्मेंद्रिया वशीभूत हो जाती है तो मन को, मन उसके विवेक को हर लेती है। इंद्रियों के सेटिस्फाई करने गए हम, कर्मेंद्रिय की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो विकृत चिंतन में पड़े तो मन उसके विवेक को हर लेती है। जिस व्यक्ति का अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार होता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अपनी कर्मेंद्रिय पर राज्य करने वाला ही अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर सकता है और एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर शाश्वत रूप में सदा अंदर समा जाता है। इसीलिए कर्मेंद्रिय के पीछे अटकाना नहीं। बहुत सुंदर एक बात याद आती है मुझे यहां कि एक बार एक मुसाफिर था और मुसाफिर के पास बड़ा हुष्ट पुष्ट घोड़ा था और वो घोड़ा इतना अच्छा था लेकिन चंचल बहुत था। वो एक राजा के पास जाता है, मेरे पास बहुत सुंदर घोड़ा है, घोड़ा दिखाया, राजा खुश हो गए, इतना अच्छा घोड़ा है, लेकिन कहा ये घोड़ा जो है ना चंचल बहुत है, अगर आपके राज्य में ऐसा कोई उस्ताद हो जो इसको वश कर सके तो मैं घोड़ा फ्री में दे दूंगा। राजा को मन में हुआ ऐसा घोड़ा तो मेरा अस्तबाल में होना ही चाहिए। उसने कहा मेरे राज्य में एक से एक उस्ताद है, ये घोड़े को वश करना कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। कहा ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम भी देखें कैसे वश करता है। आप सारे उस्तादों को बुला लीजिए, एक खुले मैदान में हम घोड़ा लेकर के खड़े होंगे, प्रजा को भी बुलाओ चारों तरफ बैठ जाए और वो वश करे, प्रजा भी तो देखे कैसे वश किया जाता है। एक दिन निश्चित किया, प्रजा को भी बुलाया गया, सारे उस्तादों को राज्य भर से बुला लिया गया और वो मुसाफिर अपना घोड़ा लेकर के मैदान में खड़ा हो गया, चारों ओर प्रजा बैठ गई देखने के लिए। अब घोड़ा इतना चंचल था जो भी उस्ताद उसके नजदीक जाता था उसको नजदीक आने नहीं देता था, कोई आगे से जाता था दोनों पैर उठाकर उसके ऊपर अटैक कर देता था, कोई पीछे से जाता था पीछे से लात मार के गिरा देता था। घोड़ा वश में नहीं, सारे उस्ताद एक के बाद एक फेल हो गए। राजा बड़ा परेशान हो गया, मेरे राज्य में एक भी उस्ताद ऐसा नहीं जो एक घोड़े को वश कर सके। फिर प्रजा को संबोधित करते हुए कहा अरे प्रजा में कोई बैठा है इस घोड़े को वश कर सकता है? प्रजा सोचने लगी जहां उस्ताद नहीं कर पाए हम क्या करेंगे। काफी देर से राजकुमार बैठ के देख रहा था, उसने राजा से कहा अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं घोड़े को वश करूं। राजा ने कहा अरे उस्ताद नहीं कर सके तू क्या करेगा, तू तो छोटा है। कहा आप मुझे परमिशन तो दो शायद मैं कर सकूं। राजा ने कहा भले करो। राजकुमार काफी देर से देख रहा था जिस दिशा में घोड़े को खड़ा किया था वहां से लंबी परछाई गिर रही थी और जो उस परछाई के नजदीक आता था घोड़ा भड़क जाता था। तो राजकुमार ने क्या किया, धीरे धीरे घोड़े की दिशा चेंज किया, अब परछाई पीछे गिरने लगी, घोड़े को कुछ दिखाई नहीं दिया। और जैसे ही घोड़े को कुछ नहीं दिखाई दिया पीछे से जाकर एकदम उसके ऊपर चढ़ के लगाम खींच लिया, घोड़ा वश हो गया। हमारा मन रूपी घोड़ा जो उछल कूद मचाता रहता है, क्यों मचाता है? क्योंकि हमने भी जिस दिशा में उसको खड़ा किया है ना, वहां कामनाओं की लंबी परछाई गिर रही है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हर रोज कोई नई चीज चाहिए। तो चाहिए चाहिए कि चाहना जो है वो कर्मेंद्रियां मन को आकर्षित करती रहती है, और ये परछाई जो गिरी है उसके कारण जो नजदीक आता है घोड़ा भड़कता है, उछलकूद मचाता है, वश होने नहीं देता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान में हम क्या करते हैं, अपने मन की दिशा को परिवर्तन करते हैं। मन को मारना नहीं है, मन का दमन नहीं करना है, मन को अमन नहीं बनाना है, मन को सुमन बनाओ, अच्छे विचारों से भरो, सुमन बनाओ, और इस दिशा में खड़ा करो जहां से कोई कर्मेंद्रियां उसको विचलित न करे। और फिर आत्मा बुद्धि रूपी लगाम हाथ में खींच ले और घोड़ा देखो वश होता है कि नहीं होता है। यही बात भगवान यहां कहना चाहते अर्जुन को कि जिस तरह तेज हवा पानी पर तैर रही किश्ती को बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार कर्मेंद्रिय के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेती है। और जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त किया वही स्थित प्रज्ञ है। और कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार कैसे प्राप्त करना है, तो कहा अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करो। ज्ञान माना समझ, समझ से उसको वश करो, दमन नहीं करो, समझ से अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करो। कितनी सुंदर प्रैक्टिकल बात भगवान कहते हैं। और फिर इस अध्याय के अंत में कहा भगवान ने, योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि नहीं है। योग साधना ही ना हो तो निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि नहीं है, उसके अंतकरण में भाव नहीं है, और भाव रहित पुरुष को शांति नहीं है, अशांत पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं है। अतः अर्जुन को कहते भगवान, योग माना क्या? तो कहा योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। योग इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। कोई दूसरा हमारी इंद्रियों को डिसिप्लिन करे, सुसंस्कृत करे, ऐसा नहीं, खुद ही ज्ञान के माध्यम से उस कर्मेंद्रिय को सुसंस्कृत करना है, इट इज अ साइंस। परेशान मन वाला व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है, अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू अपनी कर्मेंद्रिय को जीत। फिर तीसरे अध्याय में भगवान आगे बहुत सुंदर कर्म योग का विषय लेते और गहराई से, व्यक्तिगत जीवन में कर्म योग किसको कहा, स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म उसको कर्मयोग कहा। लेकिन व्यवहारिक जीवन में कर्मयोग किसको कहा जाता है, यह तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर आठवें श्लोक तक ज्ञान योग और कर्मयोग की आवश्यकता, नौवें श्लोक से लेकर सोलहवें श्लोक तक यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता, सत्रहवें श्लोक से लेकर चौबीसवें श्लोक तक ज्ञानवान और परमात्मा के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता, 25वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दी है, और 36वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक काम के निरोध का विषय, ये काम और क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी है, काम क्रोध आदि से ज्ञान भी ढक जाता है। अब अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल आता है यहां पर, क्योंकि इतनी ज्ञान की बातें भगवान ने की और कर्म योग की बातें भी की। तो भगवान को पूछते हैं अर्जुन, जो हमारे मन में भी प्रश्न हो सकता है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है? अब एक बात करो, ज्ञान करना है, ज्ञान योग करना है या कर्म योग करना है? क्या कहेंगे आप, ज्ञान योग करना है या कर्म योग करना है? भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया और कहा, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग है, योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ता है, कर्म अनिवार्य है। ये नहीं कि ज्ञानियों को कर्म नहीं करना पड़ता है, खाली योगियों को कर्म करना पड़ता है, कर्म अनिवार्य है। सभी पुरुष अर्थात सभी आत्मा प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। प्रकृति के तीन गुण कल हमने देखा, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उससे विवश होकर के मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, जब मन से सर्वथा अनासक्त होकर कर्मेंद्रिय से कर्म योग का आचरण करता है तथा अपने शरीर निर्वार्थ कर्म करते हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है, वही श्रेष्ठ है। समझ में आया? ये ऊपर से गया, समझ में आया या ऊपर से गया? ऊपर से गया। भगवान ये कहना चाहते हैं कि ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग, योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग, लेकिन कर्म दोनों को करना ही पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान का समावेश कर्म में करता है, समझदारी से कर्म करता है, ज्ञान माना समझ, समझदारी से जो कर्म करता है, अपनी कर्मेंद्रिय को अपने अधिकार में रखकर कर्म करता है, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर्म में, ये श्रेष्ठ है। ज्ञान माना यह नहीं कि हम दूसरों को ज्ञान सुनाए, हमारे जीवन में न हो, नहीं, पहले उस ज्ञान को हमें प्रैक्टिस करना है और हमारे कर्म द्वारा दूसरों को इंस्पिरेशन देना है ना। इसलिए श्रेष्ठ कौन है? जो ज्ञान का समावेश कर्म में करता है वो श्रेष्ठ है, जो ज्ञान का समावेश करते हुए कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करता है और कर्म योग करता है वो श्रेष्ठ है। कितनी सुंदर बात, डाउन टू अर्थ। हम सोचते हैं एक दोनों में से चुनना है और हम कह देते हैं ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग करना है, दूसरा कहेगा कर्म योग करना। नहीं, दोनों को जोड़ना है, ये भगवान सिखाते हैं। ज्ञान खाली दूसरों के लिए नहीं है, ज्ञान का एप्लीकेशन हमें अपने कर्मों में करना है और उसका रिजल्ट देखना है और रिजल्ट दिखाते हुए दूसरों को इंस्पायर करना है, ये है श्रेष्ठ। उसके बाद भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, कर्म योग व्यवहारिक रूप में किसको कहा जाता है? तो भगवान कहते हैं कर्म योग मानव के सनातन कर्तव्य है। भगवान कहते हैं यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, जिससे यज्ञ पूर्ण हो। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी मनुष्य करता है वह बंधन है। यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण कर। तो क्या कल से लेकर हवन करना चालू कर दे? अगर यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, बाकी सब बंधन है, तो क्या करना चाहिए? कल से लेकर हवन करना चाहिए? भगवान का भाव क्या है समझना है। फिर आगे भगवान कहते, प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ जिसमें तुम लोगों का अनिष्ट नहीं है, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो। वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे और आराध्य संबंधी भोगों को उपलब्ध करेंगे। तो देवता कौन है और क्या कहना चाहते हैं? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, बाकी सब बंधन है। भाव है, भगवान का भाव है कि यज्ञ माना कोई हवन करना, उसको यज्ञ नहीं कहते। आज कहीं पर भी अगर हवन करते हैं, किस लिए करते हैं? किस लिए करते? किसी ने नया मकान लिया, मकान के गृह प्रवेश के समय हवन करते हैं ना, यज्ञ करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? शुद्धिकरण के लिए। कोई भी जगह यज्ञ जब किया जाता है तो शुद्धिकरण के लिए, कि घर के वातावरण के अंदर कोई नकारात्मकता वाइब्रेशन हो, उसका शुद्धिकरण हो जाता है, इसलिए यज्ञ किया जाता है। तो यज्ञ माना शुद्धिकरण की प्रक्रिया, इसके लिए यज्ञ किया। अब वो यज्ञ के अंदर एक तो अग्नि होती है, फिर तीन चीजें स्वाहा करते हैं। क्या स्वाहा करते हैं? सबसे पहले जौ, स्वाहा। दूसरा तिल, स्वाहा। तीसरा घी, स्वाहा। ये तीन चीजों को स्वाहा करते हैं और यज्ञ संपन्न होता है। कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं और यज्ञ संपन्न होता है और घर का शुद्धिकरण हो गया और लोग घर में रहने जाते हैं। दूसरे दिन से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है भाई, दो दिन भी शांति नहीं हुई यज्ञ करने के बाद। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सही अर्थ में हमने यज्ञ किया ही नहीं। हवन जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, उसका आध्यात्मिक मतलब समझना जरूरी है कि ये जीवन एक यज्ञ है, ये जीवन एक यज्ञ है जिसमें ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करना है। समझ, ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करना है और इसमें तीन चीजों को स्वाहा करना है। कौन सी तीन चीजें? जौ लंबा होता है, ये तन का प्रतीक है कि ये तन के द्वारा जो बुरे कर्म हो रहा है, उन बुरे कर्म को करो स्वाहा तो तन का शुद्धिकरण होगा। मन, तिल जो है सूक्ष्म है, मन का प्रतीक है। मन के अंदर जो बुरे विचार है, वो बुरे विचार को करो स्वाहा तो मन का शुद्धिकरण हो जाएगा। और घी लिक्विड होता है, धन का प्रतीक है। धन जो बुरे रास्ते पर जा रहा है, बुरी आदतों के पीछे जा रहा है, उन बुरी आदतों को करो स्वाहा तो धन का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो तन मन धन के अंदर से जो बुराइयां हैं, उसको जब स्वाहा करते ज्ञानाग्नि में, समझ, ज्ञान मन समझ, तो जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध हो जाता है। और ऐसा जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होगा तो कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ये संसार के अंदर शांति हो जाएगी। इसलिए लोग शांति यज्ञ कर रहे हैं कि भाई दुनिया में शांति, शांति हो ही नहीं रहे। कितना किलो घी चला गया, कितना तिल स्वाहा कर दिया, कितना जौ स्वाहा कर दिया, फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक परिभाषा से उसको हमने समझा ही नहीं। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, अर्थात जीवन रूपी यज्ञ की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जो कर्म किए जाते हैं वही यथार्थ कर्मयोग है। कर्मयोग किसको कहा? जीवन रूपी यज्ञ की प्रक्रिया में, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जो कर्म किया गया वो ही यथार्थ कर्मयोग है। वो हवन की बात नहीं है, यह जीवन रूपी यज्ञ की बात है। कितनी ऊंची बात भगवान कर रहे हैं। भगवान कभी ग्रॉस लेवल पर नहीं बात करता है, भगवान का बात करने का स्तर बहुत ऊंचा है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए गीता पढ़ पढ़ करके रख देते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, गीता समझ में नहीं आ रही है। युद्ध का मैदान है, वहां हवन करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? लोग यही सोचेंगे ना, भाई युद्ध के मैदान में खड़े हैं अर्जुन, लड़ने के लिए तैयार है, डिप्रेशन में चला जा रहा है, और उसको कहते तू यज्ञ कर। अब युद्ध का मैदान में युद्ध करेगा या यज्ञ करेगा? इसलिए लोग गीता पढ़ने के बाद कहते कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करने के लिए कहा जा रहा है। जीवन से संबंधित बातें, जीवन में जो संघर्ष है, जीवन में जो अशांति फैल रही है, वो क्यों फैल रही है उसको समझो, और तब ये जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो करेंगे वो यथार्थ कर्म है। पहले के जमाने में जब परिवार इकट्ठा रहता था, माता पिता बच्चे पोतरे सब साथ में रहते थे, शाम का समय जब होता था तो दादा अपने पोते को अंगुली पकड़कर ले जाता था घुमाने। कहां ले जाते थे? कहां ले जाते थे? बहुत दादाएं बैठे हैं। कहां ले जाते थे? मंदिर तक। मंदिर तक ले जाते थे, और मंदिर ले जाने के बाद दादाजी नमस्कार करते, हाथ जोड़ करके देवताओं की मूर्ति के सामने, वो देखकर वो पोता भी नमस्कार करता। अगर दादा ने साष्टांग प्रणाम किया तो पोता देखकर क्या करेगा? वो भी साष्टांग प्रणाम करता है। उसके बाद दादा ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और दान पेटी में डाला, ये देखकर पोता क्या करेगा? क्या करेगा? दादा की धोती खींचता है, दियो। बात करना नहीं आता है, बोलना नहीं आता, दियो दियो। अरे भाई डाल दिया ना, तो क्या कहता है? नहीं मुझे भी डालना है, मुझे भी डालना है, उधम मचाना चालू करता है। अगर नहीं दिया, दादा उसको जेब में से 5 पैसा निकाल करके दे देते, लो डाल तू। उसको कोई मतलब नहीं, 5 पैसा है, 8 आना है, 1 रुपया, कोई मतलब, डाला बस, 5 पैसा डाला ना, उसको बड़ी खुशी होती है। ये संस्कार दिए जाते थे, है ना? और उसके बाद थोड़ी देर मंदिर के आंगन में बैठते, फिर वापस घर चले आते थे। दूसरे दिन जैसे ही शाम होती है, वो पोता क्या करेगा? दादा की धोती खींचना चलो चलो चलो, उसको पूछो कहां चलना है, बोलना नहीं आता है, क्या कहता है? जय जाना है, जय जाना है, इशारे से बात करता है। और अगर दादा ने कह दिया मेरे पास आज टाइम नहीं, मेरे को काम है, मेरे को कहीं जाना है, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, अब पोता क्या करेगा? दादी के पास जाता है, चलो चलो चलो, आखिर दादी को लेकर जाना पड़ता है। अब दादी लेकर के तो जाती है धीरे धीरे, और दादी को घुटने का प्रॉब्लम है, खड़े होकर दादी ने नमस्कार कर दिया, वो पोता क्या करता है? साष्टांग प्रणाम करो, दादा ने तो कल साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग करो। दादी क्या कहती? तू कर ले, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, तू कर ले बस, फिर बच्चा ठीक है। दादी के घुटनों में प्रॉब्लम, खुद कर लेता है। उसके बाद फिर खींचता है साड़ी, पैसा दो डालना है इसमें, पैसा दो डालना है, कल डाला था। संस्कार की बात है ना? अब दादी ने कह दिया कि मैं तो पर्स लाना ही भूल गई, पैसा तो है नहीं, अरे ऐसे कैसे चलेगा, पैसा तो डालना पड़ेगा, उधम मचाना चालू कर, आखिर दूसरा कोई ले, भाई तू ले ले, डाल दे। 5 पैसा उसको मिल जाता है, डाल देता है, बड़ा खुश हो जाता है, डाल दिया मैंने। फिर वापस वापस घर आ जाते। पहले दिन तन गया, धन गया, तो दूसरे दिन शाम होते मन जाता है। तन मन धन का बहुत गहरा कनेक्शन है। जहां तन जाता है वहीं धन जाता है, वहीं दूसरे दिन मन जाता है। ये संस्कार होते थे पहले के जमाने में, लेकिन आज की दुनिया में संस्कार कैसे होते थे? आजकल दादा दादी कहीं गांव में रह रहे हैं, माता पिता बच्चे कहीं शहर में रह रहे हैं, अब कौन मंदिर ले जाए? दोनों पति पत्नी नौकरी कर रहे हैं, बच्चे घर में अकेले हैं। शाम के समय में पिता आता है अपने टेंशन में, और टेंशन में आकर के इतना सर भारी है, आते ही बच्चे को क्या कहता है, बेटा जरा नीचे जाना वो पान की दुकान पर, वहां से एक सिगरेट का पैकेट लेके आओ। वो सिगरेट का पैकेट लेके आता है और जैसे ही धुआं निकालता है, एक सिगरेट पिया, कहता अब माथा हल्का हुआ। अब वो बच्चा देख रहा है ये धुआं निकालने से माथा हल्का कैसे हो जाता है। पहले दिन तन गया, धन गया, सिगरेट का पैकेट खरीदा, दूसरे दिन बच्चे का मन होगा मैं भी पी के देखूं। ये धुआं निकालने से कैसे माथा हल्का होता है? जब मां बाप नहीं होंगे तो पिएगा? छोटी उम्र से ही पीना चालू करता है कि नहीं? मां बाप को पता भी नहीं चलता है। ये आज के संस्कार है। तो जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध हुआ या अशुद्ध हुआ? और पहले के समय का जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध था या अशुद्ध था? जो हम लोगों को संस्कार मिले थे वो कैसे थे, और आज हम अपने पोत्रों को जो संस्कार दे रहे हैं वो कैसे हैं? बहुत बड़ा अंतर है। आज उनको मंदिर में ले जाने का टाइम ही नहीं है, वो संस्कार देने वाली बात ही नहीं है। तो जीवन रूपी यज्ञ अशुद्ध हो रहा है, अशुद्धि की ओर बढ़ रहा है। बच्चा पहले तो सिगरेट पीता है, सिगरेट पीने के बाद कब ड्रग्स पर चला जाता है पता भी नहीं चलता मां बाप को, लेकिन जब उस ड्रग्स में आकर के कोई हरकत करता है तब मां बाप की आंखें खुलती है, अरे ये कब से लेना चालू किया था उसने, ये कब से लेना चालू किया, कि कहां फंस गया, तब मां बाप की आंखें खुलती है ना? और कैसे कई बार बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो ड्रग्स में नशे में आकर के कुछ ऐसी उल्टी हरकतें कर देते हैं। मां बाप को जब बदनामी होती है तब पता चलता है। ये आज के संस्कार है, शुरू हुआ एक सिगरेट से। ये संस्कार हम अपने बच्चे को दे रहे हैं। तब भगवान ने कहा यज्ञ की प्रक्रिया ही यथार्थ कर्म योग है। जहां जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो रही हो वही यथार्थ कर्म योग है, जिससे जीवन रूपी यज्ञ संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी करते वो बंधन है, वो बांधने वाला है। जैसे कहा बच्चा अगर ड्रग्स का शिकार हो गया कितना बंधन बनने लगता है, कितनी भोगनाओं से गुजरना पड़ता है उसको। एक दिन भी अगर ड्रग्स नहीं मिला तो हालत क्या होती है उसकी, कितना बंधन महसूस होता है, जैसे कोई खींच रहा है उसको। और फिर कहा ये यज्ञ पूर्ति के लिए, अच्छे संस्कारों की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहो। ये ड्रग्स पर क्यों चढ़ा? संग दोष। संग दोष से अलग रह करके कर्मों का आचरण करो। फिर कहा प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो। जीवन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसे व्यक्ति सफलता की ओर कदम बढ़ाता है। सफलता को प्राप्त करता है। यह यज्ञ जिसमें तुम लोगों का अनिष्ट नहीं होगा, कभी कोई मुसीबत नहीं आएंगी शुद्धिकरण की प्रक्रिया में, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो। देवताओं की उन्नति करो माना दैवी संस्कारों की वृद्धि करो। जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण के लिए दैवी संस्कार की वृद्धि करो। वो दैवी संस्कार तुम लोगों की उन्नति करेगा, तुम्हारी उन्नति करेगा और आराध्य संबंधी भोगों को उपलब्ध करेगा। कितनी सुंदर बात कही है। उसके बाद भगवान अर्जुन को और एक सुंदर बात कहते हैं कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। इसलिए जब बारिश नहीं आती है लोग हवन करना चालू कर देते। गीता में कहा है कि जब अन्न की उत्पत्ति नहीं होती हो, बारिश नहीं आती हो, तो यज्ञ करो बारिश आएगी। लोग इसीलिए खेतों में बारिश लाने के लिए हवन कर, क्यों? गीता में भगवान ने कहा है। अब सोचने की बात तो यह है, युद्ध का मैदान है। अब युद्ध के मैदान में खेतीबाड़ी क्यों सिखाएगा भगवान? खेतीबाड़ी क्यों सिखाएगा? सोचने की बात है। युद्ध का मैदान है, लड़ो भाई। लड़ने के लिए उसको मोटिवेट करना है। यही स्पष्ट करता है यह हिंसक युद्ध था ही नहीं। खेतीबाड़ी नहीं सिखा रहा है भगवान, जीवन की प्रक्रिया समझा रहा है। और इसीलिए कहा अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। वृष्टि माना कृपा वृष्टि, दुआओं की वृष्टि कैसे होती है? यज्ञ से। जब जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध हो तो अपने आप आशीर्वाद बरसते हैं, ऊपर वाले के भी आशीर्वाद बरसने लगते हैं। और अन्न की उत्पत्ति माना मन के जीवन के लिए अन्न कौन सा है, सबसे पौष्टिक भोजन कौन सा है जीवन के लिए? खुशी, प्रसन्नता। तो प्रसन्नता रूपी अन्न की उत्पत्ति जीवन रूपी यज्ञ के अंदर होने लगती। कब? कब? जब जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है। यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला और पूर्ण होता है, और कर्म वेदों से उत्पन्न होता है। वेद अविनाशी परमात्मा ज्ञान सागर से प्राप्त होता है। यानी ज्ञान का एप्लीकेशन करो कर्म में, वो कर्म जब अच्छे होने लगते हैं तो अपने आप जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण होता है, जिसमें परमात्मा की भी कृपा वृष्टि होने लगती है और जीवन तब प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। कितनी ऊंची बात है। लेकिन आज दुनिया में लोग जब गीता पढ़ते हैं तो ग्रॉस लेवल पर पढ़ रहे हैं। भगवान ने कहा हवन करो, बारिश नहीं आती है तो हवन करो। अरे भाई, युद्ध का मैदान अगर है वहां खेती बाड़ी क्यों बताएगा? एक बहुत सुंदर बात याद आती है आशीर्वाद से। एक बार एक महात्मा जी थे, और महात्मा जी ने अपनी कुटिया एक राज्य की सीमा के बाहर बनाई और वहां रहने लगे। बड़े साधना करने वाले सिद्ध पुरुष जब समय मिले साधना में बैठते थे, और कोई काम होता नहीं था उनको। अब उस राज्य से जो लोग आते थे जाते थे, स्वाभाविक है जब महात्मा जी को देखते थे तो प्रणाम करते थे। तो जब प्रणाम करते थे, अगर महात्मा जी का ध्यान गया तो आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देते थे। निश्चल भाव से लोग प्रणाम करते थे तो वो भी आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देता था। और सिद्ध महात्मा होने कारण जिसकी जो मनोकामना होती थी वो पूरी हो जाती थी। कोई को अगर शारीरिक तकलीफ होती थी, महात्मा जी का आशीर्वाद मिला तो जैसे शारीरिक तकलीफ खत्म हो जाती थी। किसी को और कोई परेशानी होती थी वो खत्म हो जाती थी। तो धीरे धीरे जो लोग आते थे सारे राज्य में बात करते थे कि राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा जी रहते हैं ना, बड़ा सिद्ध है, उसका आशीर्वाद जिसको मिल जाए ना, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये बात जैसे फैलती गई, लोग आते गए, खड़े रहते थे घंटों महात्मा जी साधना में से उठने के लिए, और जैसे ही देखते थे महात्मा जी को, प्रणाम करते थे, महात्मा जी भी उनके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर देते थे। लोग चले जाते थे, बड़े खुश होते थे। धीरे धीरे ये बात राजा के कान तक पहुंची। अब उस राज्य का राजा जो था बड़ा लालची था, उसने कहा भाई ऐसा महात्मा अगर है तो राज्य की सीमा के बाहर क्यों रहे, राज्य की सीमा के अंदर रहे, लोगों का भला करते रहे, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी और उनके द्वारा जो टैक्स हमको मिलना है ढंग से मिलेगा। तो कहा मंत्री जी को कि मंत्री जी आप मेरा संदेशा उस महात्मा जी के पास लेकर के जाइए कि आप राज्य की सीमा के बाहर न रहो, अंदर आके रहो, ये हमारा राजा का निवेदन है, और उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए हम उपलब्ध करा देंगे, और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिएगी वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी कुछ सैनिक को लेकर के गए महात्मा जी के पास। देखा महात्मा जी तो साधना में बैठे हैं, खड़े रहे, इंतजार किया। जैसे ही वो साधना से उठे, मंत्री जी बड़ी विनम्रता के साथ महात्मा जी के सामने गए, महात्मा जी हमारे राजा का आदेश है, एक नम्र निवेदन है कि आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, आप अंदर रहो, और उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए उपलब्ध करा दिया जाएगा, जितनी भूमि चाहिए उतनी दिया जाएगा, और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए जितनी भी सोना मोहर चाहिए वो भी हम आपको दे देंगे। तो महात्मा जी मुस्कुराए और कहा ठहरो, अपनी कुटिया में गए और एक कमंडल लिया और बाहर आए, मंत्री जी को कहा चले, कहा कहां, कहा राजा के पास भूमि दे रहे हैं, सोना मोहर दे रहे हैं ना। अब मंत्री जी ने इतना जल्दी तो एक्सपेक्ट किया नहीं था कि महात्मा जी तैयार भी हो जाएंगे। उन्होंने सैनिक को आगे भेज दिया कि राजा को कहो महात्मा जी मिलने आ रहे हैं। और मंत्री जी महात्मा जी को लेकर जब पहुंचे तो राजा खुद स्वागत के लिए आगे सारी तैयारी करके आगे खड़े थे। बड़े सम्मान पूर्वक महात्मा जी का स्वागत किया और उनको सम्मान पूर्वक राजमहल में ले गए, आसन ग्रहण करवाए और विनम्रता के साथ राजा घुटने पर महात्मा जी से कहने लगे, महात्मा जी आप हमारे राज्य का कल्याण कर रहे हो, आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, अंदर रहो, यह हमारा नम्र निवेदन है, जो भूमि चाहिए जितनी चाहिए हम दे देंगे, और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए जो सोना मोहर चाहिए वो भी दे देंगे। महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कहा ये कमंडल भर के सोना मोहर दे दो। राजा ने कमंडल उठाया, कमंडल इतना गंदा था, कितना समय का रखा हुआ, जाले लगे हुए थे, पता नहीं उसमें क्या खाया था क्या रखा था, बदबू मार रहा था, इतना गंदा, उसमें सोना मोहर कैसे डाले। राजा ने अपने दास दासी को बुलाकर कहा ये कमंडल साफ करके ले आओ। साफ करके ले आए, अपने सिल्क के कपड़े से राजा ने उस कमंडल को अच्छी तरह से पोछा और फिर उसमें सोना मोहर भर के दिया। सोचा कि अब महात्मा जी की कृपा वृष्टि होगी मेरे ऊपर, इतनी सोना मोहर जो दिया है। लेकिन महात्मा जी मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा महात्मा जी आपके आशीर्वाद तो मिल जाए। फिर भी महात्मा जी मौन रहे, कुछ नहीं कहा। दोबारा कहा, महात्मा जी आपकी कृपा वृष्टि हो जाए। तब महात्मा जी ने कहा, पहले पात्र साफ करो। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। कहा, जिस तरह आपको ये कीमती सोना मोहर डालनी थी तो गंदे पात्र में नहीं डाली, पात्र को साफ करवाया। इसी तरह आशीर्वाद भी इतने अमूल्य है, मन अगर साफ नहीं है, पात्र साफ नहीं है, वहां आशीर्वाद कैसे डालूं? पहले मन साफ करो, भावनाओं को शुद्ध करो, तब आशीर्वाद की वर्षा होगी। तो जिसका जीवन रूपी यज्ञ ज्ञान के आचरण से शुद्ध होता है, उसके ऊपर अपने आप कृपा वृष्टि बरसने लगती है। और जब वो कृपा वृष्टि बरसती है तो मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता है, धन्य धन्य महसूस कर देते हैं। यही तो भोजन है, यही मन का भोजन है। तो अन्न की उत्पत्ति, अन्न मन, ये प्रसन्नता, आत्मसंतुष्टि, ये धन्य धन्य फीलिंग, ये कब होती है? जब आशीर्वाद की वर्षा होती है। और आशीर्वाद की वर्षा किस पर होती है? जिसका जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध हो। और जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध कैसे होगा? तो ज्ञान से। ज्ञान जब कर्मों में समावेश उसका होता है, ज्ञान का समावेश जब कर्मों में होता है, तभी जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है। और ज्ञान कहां से मिलेगा? तो ज्ञान सागर परमात्मा, ज्ञान का सागर है, ज्ञान सूर्य है। उस ज्ञान सूर्य से, ज्ञान सागर से जो प्राप्ति होती है ज्ञान की, वो ज्ञान को जब हम अपने कर्म में, आचरण में ले आते तो जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध हो जाता है और कृपा वृष्टि अपने आप बरसने लगती है। कितनी सुंदर बात कही है, लेकिन आज दिन तक किसी ने ये समझाया ही नहीं गीता में कि भगवान इतनी सुंदर बात कर रहे हैं। इतने स्थूल लेवल पर हम आ जाते हैं, भगवान ने यज्ञ करने के लिए कहा, हवन करने के लिए कहा, इसलिए बारिश नहीं आती तो हवन करो और वहां सारे शास्त्र रख दो, ज्ञान के सारे शास्त्र रख दो, इसलिए लोग खेती में यज्ञ करते हैं, सारे शास्त्र वहां रख देते हैं एक गाड़े में, और फिर वो गाड़े का परिक्रमा कराते हैं। भाई गीता में कहा है, अरे गीता में क्या कहा है, सोचो तो सही, क्या कहा है? कितनी सुंदर बात कही है भगवान ने। आगे फिर भगवान कहते, इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता है, ऐसे जो जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध नहीं करता है, वो पापायु है, वो पापी है। इंद्रियों का सुख चाहने वाला व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विशेष विधि है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं अपितु अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय सुख क्या होता है? अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। इंद्रियों का संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पापायु है। एक बार एक व्यक्ति ने खूब भक्ति किया, खूब भक्ति किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को कहा, मांगो, जो चाहिए मिलेगा। तो वो व्यक्ति ने कहा, भगवान मैं सदा सुखी रहना चाहता हूं, कभी दुखी होना नहीं चाहता हूं, मुझे ऐसी कोई विधि बताओ, ऐसा आशीर्वाद दो, मैं सदा सुखी रहूं, अक्षय सुख की प्राप्ति करूं। भगवान मुस्कुराने लगे, बस इतनी सी बात? बोले हां, मैं सदा सुखी होना चाहता हूं। भगवान ने क्या किया, कावड़ दिया, कावड़ होता है ना, वो कावड़ दिया, और कावड़ देकर के उसको कहा, एक तरफ काला कपड़ा था, एक तरफ सफेद कपड़ा था, तो कहा, ये कावड़ लेके चलना, सफेद कपड़ा आगे रखना, काला कपड़ा पीछे रखना, और सदा सुखी हो जाएगा। मनुष्य इतना परेशान हो गया, भगवान ये क्या उलझन है, ये क्या पहली है, ये काला कपड़ा सफेद कपड़ा क्या है, और उससे उसको लेकर चलने में कैसे सदा सुखी हो जाऊंगा। भगवान मुस्कुराकर कहता है कि देखो, जीवन की यात्रा में तुम बहुत लोगों से मिलेगा, हर इंसान में अच्छाई भी होती बुराई भी होती। जब तुम्हें किसी की अच्छाई दिखाई दे तो सफेद कपड़े में रख देना आगे, और उसी अच्छाई के आधार पर व्यवहार करना, और जब तुम्हें कभी किसी की बुराई दिखाई दे तो पीछे काले कपड़े में डाल देना, उसको सामने नहीं रखना, उसके आधार पर व्यवहार नहीं कर, व्यवहार करना अच्छाइयों के आधार पर, क्योंकि हर एक में अच्छाई भी है बुराई भी है, बुराई उसकी पीछे डाल देना, फिर देखो सदा सुखी हो जाएगा। मनुष्य ने कहा ठीक है, और वैसे ही मनुष्य लेकर के कावड़ लेके चलने लगा। जब भी किसी से मिलता था अच्छाई दिखाई देती थी सामने रख देता था, उसी के आधार पर व्यवहार करता था। अब जो अच्छा व्यवहार करेगा तो सामने वाला भी अच्छा ही व्यवहार करेगा, जो देंगे वही वापस आएगा, तो सुखी सुख अनुभव होने लग, सब अच्छाई से बात करते थे, सब अच्छे लगने लगे, और इतने अच्छे लगने लगे कि जीवन में जैसे सुखी सुख बरसने लगा। और जब किसी की बुराई दिखाई देती थी पीछे डाल देता था, उसको चित पर नहीं रखता था, डाल दिया और चलता चला, और सचमुच सुख का अनुभव करने लगा, इतना सुखी हो गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सोया हुआ था और भूकंप आया, इतना जोर का भूकंप था कि हड़बड़ाहट में मनुष्य उठा, अपना कावड़ लिया और दौड़ा, और गलती से काला कपड़ा आगे सफेद कपड़ा पीछे, और ध्यान नहीं रहा, भूल गया। अब जिसकी भी बुराई दिखाई दे सामने रखेगा, उसी के आधार पर व्यवहार करेगा, अच्छाई दिखाई दे तो पीछे डाल देता, उसको चित पर भी नहीं रखता। तब से लेकर मनुष्य दुखी हो गया। आज भगवान पुनः कहता है, कावड़ बदली करोगे, सफेद कपड़ा आगे काला कपड़ा पीछे, कावड़ बदली करने के लिए तैयार हो? अगर सदा सुखी रहना चाहते हैं, सदा सुखी रहना चाहते तो क्या करो, काला कपड़ा पीछे सफेद कपड़ा आगे, जीवन में जो मिले बुराई दिखाई दे तो पीछे डालो, अच्छाई दिखाई दे सामने रखो, उसी के आधार पर व्यवहार करो, सब अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। सिंपल सी बात है सदा सुखी होने की, इतनी सरल बात और कोई हो सकती है? भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्या गाते हैं, हे प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, गाते हैं ना, मेरे अवगुण चित न धरो। आज भगवान कहते हैं, अरे बंदे तू भी किसी के अवगुण चित न धर, पीछे डाल दे उसको, और आगे हमेशा अच्छाइयों को रखे, और अच्छाइयों को रखते हुए व्यवहार करो। व्यवहारिक जीवन के अंदर कर्म योग किसको कहा गया, इसी का नाम कर्म योग है, कि जब हम हरेक की अच्छाई को देखते हुए व्यवहार करेंगे तो ये संसार स्वर्ग नहीं बन जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम वापस नहीं आ जाएगा। कितनी सुंदर बात भगवान बता रहे हैं, है ना। और आगे फिर भगवान कहते हैं, जनक आदि ज्ञानी जन भी अनासक्त होकर सदा कर्म करते रहे। जनक माना सीता के पिता, जनक की बात नहीं कही गई है, जनक माना जन्मदाता, जो हमारे स्वरूप को जन्म देते हैं, जो हमारा अच्छा स्वरूप है उसको बाहर निकाल करके एक नए स्वरूप, हमारे स्वरूप को निखारता है, वो जनक ही है। इसलिए कहा कि जनक आदि ज्ञानी जन, जो ज्ञान का जीवन के अंदर आचरण में ले आते हैं और अपने जीवन के द्वारा जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं, जो आपके अंदर के स्वरूप को निखारता है, बाहर ले आता है। नया जन्म मिला आपको। ये गीता ज्ञान सुनकर क्या हुआ? नया जन्म नहीं मिला। ऐसा नया जन्म जिसको मिलता है वो है जनक। जनक अर्थात जन्मदाता। तो यहां योग ही जनक है। जब योग का आचरण करते हैं, बैलेंस को जीवन में ले आते हैं, तो हमारे स्वरूप को निखारने लगते हैं हम। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, संसार उसका अनुसरण करता है। इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है ऐसे जनकों की, जो अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन को भी एक दिशा दिखाते हैं, एक और अच्छी तरह से उसके जीवन को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है, और वो सवाल क्या है? तो कहते हैं, मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान, ये मनुष्य पाप क्यों कर रहा है? किससे प्रेरित होकर पाप करता है? ये सवाल है आपके मन में भी। उसका उत्तर आज भगवान देते हैं और कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान है, जो राग द्वेष के पूरक है। ये ज्ञानियों के निरंतर बैरी है। काम से ज्ञान भी ढक जाता है। कामी होता है तो उसकी शुद्ध बुद्धि भी काम नहीं करती है। मन बुद्धि इंद्रिय इसके वास स्थान है। कहां रहते हैं काम क्रोध राग द्वेष? तो कहा, मन बुद्धि और इंद्रिया इसके वास स्थान है। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयत कर, क्योंकि यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। जो इंद्रियों को वश करता है वह ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश कर देता है। इतनी अच्छी बात भगवान यहां अर्जुन को बताते और कहते हैं, मन बुद्धि इंद्रिया वास स्थान है, जहां ये बुराई बसती है। इसीलिए तुम्हें इंद्रियों को जीतने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही मन को भी विचलित करता रहता है, बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। इसलिए तुम इसको जीतो। और कैसे जीतना है? तो कहा, ज्ञान से उसको जीतो, क्योंकि ये काम ही ज्ञान को ढक देता है। और इसीलिए जब ऐसी हालत हो जाती है तब मनुष्य ये समझ नहीं पाता है कि क्या करूं। तब अर्जुन का दूसरा प्रश्न, और प्रश्न क्या है जो हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है, और भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है भगवान से, हे प्रभु, क्या हम मन बुद्धि और इंद्रियों को संयत कर पाएंगे? इज इट इजी? इंद्रियों को जीतना आसान है क्या? ये आपके मन में भी सवाल हो सकता है। तो भगवान उसका जवाब देते हैं और कहा, हे अर्जुन, इस शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। अर्थात स्वयं के आत्मबल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में कर, ये काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। इंद्रियों के द्वारा यही आत्मा को मोहित करता है। जो कहानी हमने सुनी वो घोड़े की, के ला करके ऐसा खड़ा कर दिया जहां से परछाई गिरती है तो भड़कता रहता है ये। इसलिए सबसे पहले आत्मा को क्या करना है? अपने मन रूपी घोड़े की दिशा चेंज करनी है। और आत्मा बल है हमारे पास, आत्मा के पास वो बल है। समझ को अंदर धारण करना है और घोड़े को घुमाना है। परछाई पीछे गिरेगी, और परछाई पीछे गिरेगी फिर बुद्धि रूपी लगाम को खींचो और मन रूपी घोड़ा वश हो जाए। कितना सुंदर बताया। है ना, लेकिन परछाई पीछे रहनी चाहिए, आगे नहीं होनी चाहिए। एक बड़ी हंसी की बात याद आती है कि एक बार लक्ष्मी जी और शनि में झगड़ा हो गया। वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा। लक्ष्मी जी कहे मैं बड़ी, मैं जहां जाती हूं लोग प्रसन्न। तो शनि कहता अरे मेरा प्रकोप जानते हो, मैं जहां कुंडली मार के बैठ जाऊं इसलिए लोग मेरे को ज्यादा याद करते तेरे से। अब कहा कि कौन फैसला करे। दोनों विष्णु के पास गए। लक्ष्मी जी ने कहा अब आप ही फैसला करो, हम दोनों में बड़ा कौन है, लोग मुझे ज्यादा याद करते मानते हैं या उसको ज्यादा याद करते मानते हैं। अब विष्णु जी बड़े दुविधा में पड़ गए। लक्ष्मी जी को कहे तो शनि कुंडली मार के बैठ जाएगा और शनि को कहे तो लक्ष्मी जी रूठ के चली जाएगी। अब क्या कहे। तो कहा मुझे सोचने दो, सोचकर जवाब देता हूं, तब तक आप वो पोल है ना, वो पोल टच करके वापस आओ। अब लक्ष्मी जी और शनि जी दोनों गए, पोल टच करके वापस आ रहे थे। तो विष्णु जी ने क्या कहा, जाते हुए तो शनि अच्छा लग रहा था, आते हुए लक्ष्मी जी अच्छी लग रही थी, है ना। जाते हुए शनि अच्छा लगता है, जीवन में से शनि निकलता है तो अच्छा ही लगता है, और लक्ष्मी जी आते हुए अच्छी लगती है, तो इसलिए लक्ष्मी का आवाहन करते हैं और शनि के जाने की दुआ करते हैं कि भाई दुआ हो कि भाई शनि जाए। तो इसीलिए मनुष्य को हमेशा ये ध्यान रख के कर्म करना चाहिए, नहीं तो शनि कब आके बैठ जाएगा, लक्ष्मी जी कब रूठ के चली जाएगी मालूम भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए तीसरा अध्याय यहां समाप्त होता है। चौथे अध्याय के अंदर तो बड़ी गुह्य बात भगवान अपने विषय में करते हैं, लेकिन आप सभी अगर कहे तो मैं आगे बढ़ाऊं और आधा घंटा, नहीं तो समाप्त कर दूं। बढ़ाएं आधा घंटा और आधा घंटा करें, ठीक है। अरे बाबा इतना इतना बोलने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, आधा घंटा और खींच सकते हैं हम, है ना। तो चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया है, बहुत सुंदर बात बताई है। आत्मा परमात्मा तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान का कार्य है शुद्ध करना। ऐसा दिव्य ज्ञान कर्म योग का फल है, ऐसा दिव्य ज्ञान कर्म योग का फल है। इस अध्याय में परमात्मा गीता के प्राचीन इतिहास, इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता और सतगुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय, ज्ञान सूर्य इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में विवश मनुष्य को कहता है। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उसकी महिमा बताई गई है। 24वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक फल सहित भिन्न भिन्न यज्ञों का कथन किया गया है और 33वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक ज्ञान की महिमा बताई है। और इस तरह अर्जुन का सबसे पहला सवाल है, इतनी अच्छी अच्छी बातें जब सुन रहा है तो अर्जुन भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, आपने सबसे पहले ये योग और ज्ञान की बातें किसको कहा था, ये अविनाशी योग सबसे पहले किसको सुनाया था, मुझे ही पहले सुनाया या मेरे पहले किसी को सुनाया है। तो भगवान ने कहा इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य को कहा था, सूर्य से मनु को यही गीता ज्ञान प्राप्त हुआ, मनु ने अपनी स्मृति में संजोया और मनु से इक्ष्वाकु को मिला जिसे राज ऋषियों ने जाना किंतु इस महत्वपूर्ण काल में लुप्त हो गया था। अब सोचने की बात तो यह है कि ये अविनाशी योग कि आवश्यकता किसको है, मनुष्य को है या सूर्य को है? मनुष्य को है, सूर्य को थोड़ी है। सूर्य को जरूरत है क्या? फिर भगवान ने सूर्य को क्यों कहा? कहने की जरूरत नहीं सूर्य को। सूर्य ने मनु को कहा, चंद्रमा को कहा। अब चंद्रमा को भी जरूरत है, वो तो है ही शीतल, उसको क्या जरूरत है? भावार्थ, जैसे कहा कि हर चीज के पीछे एक भाव है। लेकिन क्या हुआ, आज से 5000 साल पहले भगवान ने ये गीता ज्ञान जैसे ही दिया, अब 5000 साल, आप सोचो, बचपन में स्कूल में आपने खेल खेला होगा, एक क्लास को टीचर बाहर ले जाती है खेल के मैदान में खेलने के लिए, और हर एक ने ये खेल खेला होगा कि 50 बच्चों को एक गोलाकार में खड़ा कर देती है, एक बच्चे को बुलाती है, उसके कान में कहानी कहती है, जो उस बच्चे को जाकर दूसरे के कान में सुनाना होता है, दूसरा तीसरे के कान में सुनाता, तीसरा चौथे के कान में सुना, चौथा पांचवें, जब 50वें बच्चे तक आएगा तो वही रहेगा या बदल जाएगा? अनुभवी है आप। 5000 साल पहले जो गीता ज्ञान कहा गया, आज वही होगा या उसमें भी बदली हो गया होगा? क्या समझते हैं, कितनी बार इंटरप्रिटेशन हुआ? इसलिए कहा कि जब महाभारत लिखा था महर्षि वेदव्यास ने, तो उस महाभारत के अंदर 8000 श्लोक थे जब इसकी रचना की थी, और उसमें गीता का समावेश था। 8000 श्लोक के महाभारत, उसके अंदर गीता का समावेश था। और आज वही महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। अब सोचो कितना एडिशन, करेक्शन, कितनी चीजें निकल गई। वो जो सत्य था ज्ञान, वो तो आटे में नमक जितना ही रह गया। आटे में नमक कितना डालते हैं? चुटकी भर। तो 8000 श्लोक की रचना की थी महाभारत, उसी में गीता समावेश थी, और आज उसी महाभारत के 1,00,000 श्लोक हो तो कितना एडिशन हुआ। इसीलिए गीता समझ में नहीं आई, क्योंकि इतना एडिशन करेक्शन हो गया, जो सत्य तो लुप्त हो गया, समझ ही नहीं पाए। और ये सत्य लुप्त कब हुआ, तो कहा जाता है कि एक अंग्रेज जब भारत आया, रानी ने भेजा कि भाई यहां पर बहुत माल है जिसको हम ले सकते हैं, तुम जाओ, कैसे इनके ऊपर राज्य करें हम। तो वो जब आया 1500वीं सदी में, उसने यहां सारा भारत भ्रमण किया, और यहां से पत्र लिखा रानी को कि जिस देश पर हम राज्य करने का सोच रहे हैं, उस देश पर राज्य करना बड़ा मुश्किल है। कहा क्यों? तो उसने लिखा, इस देश में मैंने सारा भारत भ्रमण किया, लेकिन सारे भारत में मुझे एक भी इंसान चोर नहीं मिला, और एक भी इंसान भिखारी नहीं मिला। सोचो 1500वीं सदी में भी हमारी संस्कृति क्या थी, एक भी चोर नहीं, लोग दरवाजा खुला रख के सोते, कोई चोरी नहीं करता है, और एक भी भिखारी नहीं, सब समृद्ध है। इसलिए कहा इस देश पर राज्य करना बड़ा मुश्किल है। तो कहा पता लगाओ इनकी ये संस्कृति का राज क्या है। तो उसने कहा इनके शास्त्र में ऐसी ऐसी बातें हैं कि जब ये शास्त्र गुरुकुल में जाते हैं तो गुरुकुल में बच्चों को शास्त्र ही पढ़ाए जाते हैं, वैल्यूज क्या होने चाहिए वो सिखाए जाते हैं, और इसीलिए ये इतने समृद्ध है, इनकी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि इनके ऊपर राज्य करना बड़ा कठिन है। तब रानी ने कहा गुरुकुल बंद करवाओ और एजुकेशन सिस्टम चालू करो। तब पहली स्कूल जो खुली यहां कलकत्ता में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यहां आकर के, और भारतवासियों को क्या कहा, अरे शास्त्र का ज्ञान पढ़कर क्या मिलेगा आपको, जबकि उसी शास्त्रों में इतना साइंस भरा पड़ा है। आर्यभट्ट यहां से निकला, नालंदा तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी थी। आर्यभट्ट क्या, हाँ, कितने महान वैज्ञानिक इस भूमि ने पैदा किया। देश विदेश से लोग यहां पढ़ने आते थे, चीन से लोग पढ़ने आते थे, कहां कहां से लोग पढ़ने आते थे तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी में। तब उनको कहा ये शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है, दुनिया का ज्ञान होना चाहिए, ये शास्त्र आप घर में पढ़ाओ अपने बच्चों को, हम छपा करके आपको दे देंगे। और इसीलिए यहां से जो ओरिजिनल शास्त्र थे वो ले गए छपाने के लिए, ताकि छपा करके हम आपको देंगे, हर एक अपने घर में रखे, अपने बच्चों को पढ़ाए और स्कूल में भेजो बच्चों को, दुनिया का ज्ञान मिलेगा, डिग्री मिलेगी, दुनिया में सभ्य बनेंगे और सभ्यता के पूर्ण जीवन जिएंगे। लोगों ने, लोग भी उनकी बातों में आ गए, गुरुकुल बंद होने लगे और ये लोग हमारे ओरिजिनल शास्त्र ले गए, और ले जा करके ताकि ये शास्त्र दोबारा पढ़ न सके और इनकी संस्कृति से इनका जड़ों काट दो। तो जड़ों को कैसे काटेंगे, तो वेदों के शास्त्र, पुराणों में, पुराणों के श्लोक गीता के अंदर, वेदों के श्लोक गीता के अंदर, महाभारत के, सारे उलट पुलट कर दिया, ताकि मनुष्य जब पढ़े तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आए। और उसको छपाकर, इसलिए कहा 8000 श्लोक की महाभारत जिसमें गीता समाई हुई थी, आज 1,00,000 श्लोक कहां से आए, कभी हमने सवाल नहीं पूछा किसी से, ये 1,00,000 श्लोक की महाभारत कहां से हुई, किसने बनाई। अरे जो लेके गए थे उलट पुलट करके, इसको इतना बड़ा ग्रंथ बना करके दे दिया, पढ़ो आप अपने शास्त्र पढ़ो, और हमें अपनी जड़ों से काट दिया गया। आज भी लोग पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, पढ़ाना ही छोड़ दिया बच्चों को, शास्त्र का ज्ञान देना ही छोड़ दिया, स्कूल में भेजा, स्कूल में भेजकर सभ्य बनाना चाहा, डिग्रियां प्राप्त किया। और अंग्रेज जब यहां से गए ना, तो कह के गए थे कि हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हर घर में अंग्रेज ही पैदा होंगे, बोलना अंग्रेजी, खाना अंग्रेजी, पीना अंग्रेजी, चलना अंग्रेजी, पहनना अंग्रेजी, यही बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, यही बच्चे पैदा हो रहे हैं ना। तो आपके ऊपर आज भी राज कौन कर रहा है, अंग्रेज ही कर रहे हैं, आपके बच्चे ही आपके ऊपर राज कर रहे हैं, आपका नहीं चलता अपने बच्चों के आगे, वो चला रहे हैं आपको, ये कह के गए थे। हमारी एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हर घर में अंग्रेजी पैदा होंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी चलेंगे, अंग्रेजी खाएंगे, अंग्रेजी पिएंगे, अंग्रेजी पहनेंगे, अंग्रेजी जीवन शैली अपनाएंगे। हमारी सभ्यता कहां है, इसलिए कहा कि जो बातें कही गई थी वो लुप्त हो गई। अभी सूर्य को क्या जरूरत थी, वास्तव में सूर्य को नहीं, सूर्य वंशियों को ज्ञान दिया। ये अविनाशी महत्वपूर्ण योग जो है, अद्भुत योग जो है, वो कल्प के आरंभ में स्वयं प्रकाशित आत्मा अर्थात सूर्य वंशियों को, सूर्य वंशी आत्माओं को दिया गया था। वंशी निकाल दिया सूर्य, अब सूर्य को थोड़ी जरूरत है, सूर्य वंशियों को दिया गया, जहां से चंद्रवंशियों ने जाना। चंद्रवंशी राम राज्य, और फिर धीरे धीरे द्वापर युग तक भी आया। लेकिन इस महत्वपूर्ण काल में जैसे जैसे कलयुग आया, इक्ष्वाकु ने जाना, राज ऋषियों ने जाना द्वापर युग में, लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में मनुष्य विवशवान हो गए। विवशवान माना संस्कार रहित हो गए। ऐसे जब संस्कार रहित हो जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि का संचार होता है, जिसके प्रभाव के कारण ये ज्ञान लुप्त तो हो जाता है। आज लोगों को इंस्टेंट चाहिए, इसलिए रिद्धि सिद्धि तांत्रिक विद्या आदि करा के इंस्टेंट फल चाहिए, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। तो ये ज्ञान लुप्त हो गया, समाप्त हो गया, है ना। इसलिए कहा कि ये ज्ञान कहां चला गया, गुम हो गया। फिर अर्जुन दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हैं? तो भगवान कहते हैं नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं, मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित, प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, यानी किसी माता के गर्भ से नहीं होता है। मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता हूं। अपना स्वरूप का जन्म, अजन्मा। अब श्री कृष्ण तो ये महावाक्य बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया, कर्म किया, मृत्यु हुई। जब भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं, अजन्मा माना न कभी काल उसको खा सकता है, जो जन्मा ही नहीं काल क्या खाएगा। अकाल मूरत, अव्यक्त, जिसको कोई व्यक्त स्वरूप ही नहीं है, अव्यक्त। भगवान के ये महावाक्य डायरेक्ट गीता के अंदर है। वो स्वरूप कौन सा है जो कल हमने देखा कि हिंदू धर्म में जिसको ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा, जिसका जन्म नहीं है। इसलिए जब शिव का मंदिर बनता है, महादेव जी का मंदिर बनता है, तो शिवलिंग को द्वार से नहीं लाया जाता है। शिवलिंग को कहां से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता है, गुंबज नहीं लगाया जाता, ऊपर से उतारा जाता है। बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्ति द्वार से लाई जाती है, और शिवलिंग को ऊपर से उतारा जाता है और फिर गुंबज लगाते हैं। और गुंबज लगा नहीं, टूटता रहा, तो क्या कहते हैं? तड़केश्वर महादेव, उसको तड़का चाहिए। तड़केश्वर महादेव है वो, तो वो तड़का में ही जिएगा, तड़के में ही रहेगा, है ना? है कि नहीं? तड़केश्वर है अहमदाबाद में भी, है कई जगह पर है तड़केश्वर महादेव, जहां गुंबज लगा ही नहीं, जब भी लगाने गए टूट गया, कहा वो तड़का ही खाना चाहता है। तो इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी भारत में महान तीर्थ स्थान है। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर ना हो। बाकी देवी देवताओं के मंदिर स्टेट वाइज हो गए। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण का मंदिर मिलेगा, साउथ में चले जाओ श्री वेंकटेश बालाजी का मंदिर मिलेगा, ईस्ट में जाओ कलकत्ता काली मंदिर मिलेगा, वेस्ट में जाओ गुजरात महाराष्ट्र में गणेश जी का मंदिर मिलेगा, तमिलनाडु में जाओ मुरुगन का मंदिर मिलेगा कार्तिकेय का, राजस्थान में जाओ रामदेवरा जी का मंदिर मिलेगा। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन भारत भर में परमात्मा की पूजा, महादेव की पूजा हर गांव में मिली मिलेगी। कोई गांव ऐसा नहीं जहां महादेव जी का मंदिर ना हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। या तो भारत वालों की बात, भारत से बाहर इस्लाम धर्म में जाओ, मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन मक्का जब जाते हैं हज करने के लिए, वहां काबा का पवित्र पत्थर है जिसको देख करके मुसलमानों ने कहा, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है, नूर माना तेज प्रकाश, हमने ज्योति कहा, उन्होंने नूर का, बात एक ही है, अलग है, एक ही तो है। और आगे जाए, क्रिश्चियन धर्म के अंदर कहा गया गॉड इज लाइट, जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने यही कहा, मोसेस जब माउंटेन पर गए जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देखकर मोसेस ने कहा ये हो वाह द सुप्रीम लाइट। जीसस ने हमेशा ये कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, इसीलिए जब उसको क्रॉस पर चढ़ाया गया तब भी उसने भगवान से क्षमा करने के लिए कहा, आप इन्हें क्षमा कर देना, उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आज भी वेटिकन चले जाओ, जहां क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है, पोप की गद्दी है, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, अखंड ज्योति स्वरूप निराकार लाइट का ही सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है, एक ही तो है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई, एक ओमकार सतनाम कर्तापुर निर्भव निर्वैर अजोनी, कितनी सुंदर महिमा गाई है ना? और इसीलिए दिखाते, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, सभी 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है, किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? तो कहा सिद्ध शिलापति, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध शिला का ध्यान किया। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन आज भी जापान चले जाओ, 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता, जिसको कहते हैं करनी का पवित्र पत्थर चिंकुन से की, यानी जो शांति का दाता है, उसके सामने बैठ के मेडिटेशन करते हैं, कहते हमारा मन शांत हो जाता है। और आगे जाए, पारसी धर्म में अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है। पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योत को लेकर आए थे, और जब भी उनकी नई अज्ञारी स्थापन होती है, जलती हुई ज्योत का एक टुकड़ा ले जाकर के स्थापित कर देते हैं। तो सर्वधर्म मान्य कौन है? देवों का देव, महादेव, जिसकी पूजा स्वयं श्री राम ने की, श्री कृष्ण ने की, शंकर जी ने जिसका ध्यान किया, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, मालिक कहा, प्रभु कहा, हरि कहा, साईं बाबा ने क्या, सबका मालिक एक, साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, फिर हम कहां से रास्ता भटक गए, हम कहां से रास्ता भटक गए? जब उन सबने उसी को दिखाया तो हम उनके पैर क्यों पकड़ने लग गए? गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? इसीलिए परमात्मा पुनः गीता के माध्यम से कहते हैं, मेरे स्वरूप का जन्म नहीं होता है, मेरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक है, मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं, विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित हूं। तब अर्जुन का दूसरा सवाल, फिर आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हैं? तो भगवान कहते यदा यदा ही धर्मस्य। हे भारत, यहां अर्जुन को हे भारत का, यानी हर भारतवासी को कह रहे भारत भगवान कि हे भारत, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है, परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानी से भर जाता है, माना परमात्मा को भूल करके हम दूसरे दूसरे को पकड़ना शुरू करेंगे, तो ये परमात्मा की ग्लानी हुई या नहीं हुई? इंसल्ट है। जो ईश्वर है उसको वहां से उस स्थान से उतारकर दूसरों को ईश्वर के रूप में बिठा दो, यह भगवान का अपमान है या नहीं है? इसलिए कहा, हे भारत, जब जब परम धर्म, हमारा धर्म कौन सा, हिंदू धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने चुकादा दे दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है, इट्स अ लाइफस्टाइल, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हमारा धर्म कौन सा है, सनातन धर्म है, हिंदू एक जीवन शैली है, इट्स अ लाइफस्टाइल, धर्म कौन सा है हिंदुओं का, सनातन धर्म। तो जो सनातन धर्म है तो परम धर्म और परमात्मा के प्रति जब हृदय ग्लानी से भर जाता है, सनातन धर्म भी समाप्त हो गया, हिंदू कह दिए और परमात्मा को भी भूल गए, दूसरे दूसरे को परमात्मा बनाकर बिठा दिया, आज तो मनुष्य को भगवान बना के बिठा दिया, कितना बड़ा इंसल्ट है, जब मनुष्य को भगवान बना दिया तो क्या कहेंगे, कितना इंसल्ट करते रहेंगे भगवान का, और भगवान को कहां कहां, सर्वव्यापी है, कण कण में, कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है, और मनुष्य भगवान बन करके उसकी जगह पर बैठा, इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ी धर्म ग्लानी और कोई हो सकती है, हो सकती है? जब ऐसी हालत हो जाती है, जब अधर्म वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, तब तब, जब जब, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं और स्वयं अवतरित होता हूं। यहां अवतरण से अभिप्राय पुनर्जन्म लेना नहीं है, अपितु पुनः अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं, मैं अवतरित होता हूं। फिर कहा, आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हैं, तो फिर आगे भगवान कहते हैं, परित्राणायम साधुना, यानी परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक, वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए आता हूं। किस लिए आते हैं, विवेक वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए, तथा दुष्कृत्य के कारक काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि विकारों का पूर्ण विनाश करने के लिए, परम धर्म सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऐसे युगे युगे आता हूं। अब ऐसा युग कौन सा है, सतयुग तो सत्यता का युग है, वहां तो है ही देवी देवताओं का राज्य, वहां आने की तो जरूरत है नहीं, वहां तो काम क्रोध राग द्वेष है ही नहीं। अच्छा, त्रेता युग में राम राज्य है, वहां भी नहीं जरूरत है। अच्छा, द्वापर युग में अगर आए भगवान तो द्वापर के बाद, और द्वापर युग में आकर गीता का ज्ञान दे तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई, क्या कहेंगे? तो द्वापर युग में आना चाहिए नहीं, क्योंकि द्वापर युग में अगर भगवान आए तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म युग की स्थापना हुई या सनातन धर्म की स्थापना हुई? जब भगवान ने कह दिया मैं अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करता हूं, सनातन धर्म की स्थापना करता हूं, तो भगवान को कब आना चाहिए? कलयुग के अंत में, क्योंकि तब अधर्म संपूर्ण है और अधर्म का नाश करके सतयुग सनातन धर्म की भगवान स्थापना करते हैं। इसलिए कलयुग में सारी बुराई है, लेकिन कलयुग को एक वरदान भी है। कौन सा? भगवान का आने का वरदान सिर्फ कलयुग को है, दूसरे कोई युग को नहीं है। भगवान कलयुग में ही आते हैं, कलयुग के भी अति के समय में, आज अति का समय चल रहा है, ऐसे समय में ही भगवान आते हैं। अति चरित्र भ्रष्ट, अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति दुराचार, अति भ्रष्टाचार, जब ऐसा युग हो जाता है तब भगवान आते हैं, है ना, ऐसे अति के समय में। और आकर के क्या किया? तो कहा यहां युग का तात्पर्य सत्युग त्रेता हर युग का नहीं, लेकिन जब तामस गुण भरपूर हो जाते हैं, जब चारों ओर वैर विरोध हो जाता है और जब तामसी गुण ही कार्य करता है, मनुष्य में आलस्य निद्रा और प्रमाद का बाहुल्य हो जाता है, मनुष्य कर्तव्य को जानते हुए उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता है, निषिद्ध कर्म को जानते हुए उससे निवृत्त नहीं हो सकता है, इस प्रकार के युग धर्म का उतार चढ़ाव जब होता है तब परमात्मा आते हैं। तो कितनी बार आना चाहिए चारों युगों में? एक बार। ऐसे युगे युगे। अच्छा चलो चारों युग में कहो तो चार बार आना चाहिए। फिर लोगों ने 10 अवतार दिखा दिए कि 10 बार आए, फिर भी पेट नहीं भरा तो कहा 24 अवतार हो गए, 24 बार आया फिर भी पेट नहीं भरा तो कहा कण कण में है। अब बताओ एक बार आया, चार बार आया, 10 बार आया, 24 बार आया, या कण कण में है ही है, यहां सर्वव्यापी है, आपका विवेक क्या कहता है? कितनी बार दिखाएंगे? और आज मनुष्य खुद कहता है मैं ही भगवान हूं। अब इससे बड़ी धर्म ग्लानी और क्या होगी? भगवान को कह दिया कण कण में, कूड़ा कचरा गंध गटर में, और मैं भगवान बन करके बैठ गया। अब इससे बड़ी धर्म ग्लानी और क्या हो सकती है बताओ? इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा समय जब होता है मनुष्य कर्म को जानते हुए उसमें प्रवृत्त नहीं हो। दुर्योधन ने क्या कहा? धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। आज की दुनिया में कौन है जो धर्म क्या कहता नहीं जानता है? अधर्म किसको कहा जाता है नहीं जानता है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकता, अधर्म को छोड़ नहीं सकता। फिर भगवान कहते मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है, जो इन चरम चक्षु से देखा नहीं जा सकता है। तब अर्जुन पुनः पूछता है तो कौन देख सकता है, कौन समझ सकता है? क्योंकि यहां अर्जुन खुद भी नहीं समझ रहा है इसलिए प्रश्न कर रहा है। श्री कृष्ण को तो देख रहा था ना, फिर ये सवाल पूछने की जरूरत क्या थी उसको? इसका मतलब वो नहीं जान पा रहा है कि श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाला कौन है जो कहता मैं अजन्मा हूं। अरे कृष्ण ने तो जन्म लिया, फिर ये क्यों कहता है? इसलिए अर्जुन भी नहीं जान रहा है, अब कंफ्यूज हो रहा है अर्जुन। तब कहता है कौन देख सकता है, कौन समझ सकता है? तब भगवान कहते हैं केवल तत्वदर्शी, जो ज्ञान और तपस्या से पवित्र बनता है, वितराग भय और क्रोध से मुक्त होता है, वो मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है, मेरा साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस अवीर्य भाव को समझ पाता है कि परमात्मा किस वितरागी में अवतरित होते हैं। स्पष्ट कर दिया, मैं अवतरित पर काया प्रवेश करता हूं, लेकिन किस में करता हूं वो कौन जान सकता है? आत्म साक्षात्कार करने वाला इस अवीर्य भाव को समझ पाता है। कितना स्पष्ट कह रहे, माना अभी तक हमने जो समझा ईश्वर के बारे में वो सही है या गलत है, या समझा ही नहीं है, भगवान ने कहा समझ ही नहीं पाए हैं। अर्जुन को क्या, अगर अर्जुन ही नहीं समझा तो हम सब कैसे समझेंगे कलयुग में? इतने देह अभिमान के वश हो गए, कैसे समझेंगे ईश्वर को? सोचने की बात है। ठीक है, यहां समाप्त करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अब आगे किस कार्यक्रम में, क्योंकि यहां 3 दिन समाप्त नहीं हुआ, This is a new beginning, एक नई शुरुआत है, कुछ ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर आया है और ये ज्ञान की लौ को बुझने नहीं देना। बुझने नहीं देना। इसलिए यहां से आगे क्या होगा, आगे के लिए आपके लिए क्या सौगात है, वो हमारी बहनें आपको बताएंगी। हमारी भारती बहन, शारदा बहन, दोनों यहां हासुल में, लोटस में है, जहां पर ये ईश्वरीय सेवा में तत्पर है, आपकी हर रीति से गाइडेंस करेंगे। और यहां शाही बाग में भी सेंटर है, उसके बारे में भी बताएंगे। आप कहां कहां जा सकते हैं, जहां जहां जिस एरिया से आप आए हैं वहां नजदीक में कोई ना कोई सेंटर होगा, वहां का स्थान, वो स्थान पर जा सकते हैं। और जा करके आप ये लॉ को बुझने नहीं देना, जो ज्ञान के दृढ़ डाल करके आपने 3 दिन ये आत्मिक ज्योत जगाई है, अब इस आत्मिक ज्योत को बुझने नहीं देना। तो उसके लिए हमारी भारती बहन आपको बताएंगे।
ओम शांति। जैसे कहा, केवल ज्ञान की ज्योत प्रगटा दी है, लेकिन इसको बुझाना नहीं है। तो ये 3 दिन तो आपने सुना, लेकिन अब और 3 दिन जो एडवांस कोर्स